ओम शांति। आज सुबह के सत्र में हमने कुछ गुह्य बातें सुनी श्रीमद् भगवद गीता को लेकर के, और तीसरे अध्याय में कैसे ये जीवन एक यज्ञ है और इस जीवन रूपी यज्ञ को किस तरह शुद्ध रखना है, क्योंकि उसी से ही जीवन पूर्ण होता है। और उसके लिए और एक बहुत सूक्ष्म बात जो हमने देखी थी कि अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, यानी आत्मा को जो नरिशमेंट चाहिए उसकी उत्पत्ति तभी होती जब कृपा वृष्टि हो, आशीर्वाद की वृष्टि। लोगों ने इसीलिए सोचा कि भाई जब भी बरसात नहीं आती है यज्ञ करो, क्योंकि जितना जीवन रूपी यज्ञ शुद्ध होता है तो उसी से ही अनेकों की आशीर्वाद की, कृपा की वृष्टि हम अपने ऊपर अनुभव कर सकते हैं। अभी हम सभी ने बहुत सुंदर ये गीत भी सुना कि परमात्म वरदानों की प्राप्ति करनी है, यही वो समय है जब भाग्य विधाता आकर के हम सबके ऊपर वरदानों की वृष्टि करते हैं। लेकिन ये वरदान प्राप्ति का आधार भी क्या है? एक बहुत सुंदर कहानी याद आती है कि एक बार एक महात्मा जी थे, और महात्मा जी सिद्ध पुरुष थे, एक राज्य की सीमा के बाहर उन्होंने अपनी झोपड़ी बनाई थी और वहां रहते थे। जो भी उस राज्य से कहीं बाहर आना जाना करते थे महात्मा जी को देख करके प्रणाम करते थे, और महात्मा जी अपने आशीर्वाद का हाथ ऊपर कर देते थे। कई लोगों को उस सिद्ध महात्मा से जो चाहिए था वो प्राप्त हो जाता था। कोई बीमार होते थे तो उन्हें स्वास्थ्य मिल जाता था, ठीक हो जाते थे। तो ऐसे सिद्ध पुरुष की बातें बहुत जल्दी समाज के अंदर फैलती है, लोग राज्य में आकर के बताने लगते थे वे राज्य की सीमा के बाहर एक ऐसे सिद्ध महात्मा है जिनका आशीर्वाद अगर मिल जाए कोई भी बीमारी दुख आदि होता है ठीक हो जाता है। तो ये बातें वहां के राजा के कान तक पहुंचती है, और राजा बड़ा लालची था। उसने सोचा कि ऐसा महात्मा राज्य की सीमा के बाहर क्यों रहे, उन्हें तो राज्य के अंदर बुलाकर के स्थान देना चाहिए ताकि राज्य के लोगों का भी कल्याण हो, ये राज्य का भी कल्याण हो, हमारा भी कल्याण हो। उसने अपने मंत्री जी को भेजा संदेश लेकर के कि महात्मा जी आप बाहर क्यों रह रहे हो, राज्य की सीमा के अंदर आकर रहिए, आपको जो भूमि चाहिए जितनी भूमि चाहिए राजा देने के लिए तैयार है, और अच्छा आश्रम बनाइए आप अपना, लोगों का कल्याण करिए, उसके लिए जो धन राशि चाहिए वो सोना मोहर भी राजा देने के लिए तैयार है। जैसे ये संदेश प्राप्त हुआ तो महात्मा जी ने अपना कमंडल उठाया और कहा चलिए, तैयार हो गए राजा के पास जाने के लिए। वो कमंडल जो था बहुत गंदा था, बांस मार रहा था, वही कमंडल उठा करके चले। जब राजा के सामने आए तो तो राजा ने हाथ जोड़ के विनती किया कि महात्मा जी आप राज्य की सीमा के अंदर आकर रहिए, आपको जो भूमि चाहिए वो देने के लिए हम तैयार हैं, और वहां आश्रम बनाने के लिए भी आपको जितनी सोना मोहर चाहिए वो भी देने के लिए तैयार है। महात्मा जी ने अपना कमंडल आगे कर दिया, ये भर के सोना मोहर दे दीजिए। राजा ने जैसे ही कमंडल उठाया, बहुत गंदा था, बांस मार रहा था, उन्होंने दास दासियों से कहा कि ये कमंडल साफ करवा दो और साफ करवा के ले आओ। कमंडल एकदम स्वच्छ करके ले आए, राजा ने उसमें सोना मोहर भरी और महात्मा जी को दिया और हाथ जोड़ के खड़े रहे, सोचा कि अभी महात्मा जी को आशीर्वाद देंगे। परंतु महात्मा जी मौन हो गए, कुछ नहीं कहा। जब महात्मा जी ने कुछ नहीं कहा तो राजा ने कहा, महात्मा जी कोई आशीर्वाद कर दीजिए, कोई वरदान दे दीजिए। महात्मा जी फिर भी मौन रहे, कुछ नहीं कहा। तीसरी बार जब राजा ने कहा कि महात्मा जी कुछ वरदान दे दीजिए, तो उस समय महात्मा जी ने कहा, पहले पात्र साफ करो। राजा ने कहा, मैं बात समझा नहीं। कहा, जिस तरह तुम्हें ये सोना मोहर डालनी थी इस पात्र के अंदर, और ये पात्र गंदा था, तो तुमने गंदे पात्र में ये सोना मोहर नहीं डाली, क्योंकि कीमती है। पात्र को साफ करवाया। ठीक इसी तरह वरदान बहुत अमूल्य चीज है, आशीर्वाद बहुत अमूल्य चीज है, और उसको प्राप्त करने के लिए मन का पात्र साफ होना जरूरी है। अगर मन के पात्र में मैल भरा होगा, स्वार्थ भरा होगा, तो आशीर्वाद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। भावार्थ ये कि जितना जीवन रूपी यज्ञ शुद्ध होगा, ज्ञान की पराकाष्ठा उसमें होगी, परमात्मा की याद होगी, उतना ही परमात्मा के आशीर्वाद की वृष्टि का अनुभव कर सकेंगे, और वही सबसे श्रेष्ठ नरिशमेंट है हमारे माइंड के लिए, आत्मा के लिए। तो ये भाव भगवान का था। और फिर भगवान ध्यान की प्रक्रिया समझाते हैं कि हे अर्जुन, अंतरात्मा में चित्त का निरोध करके, ध्यानस्थ होकर कर्मों का मुझ में अर्पण करके, आशा ममता और संताप रहित होकर युद्ध करो। क्योंकि जब इंसान ध्यान में बैठता है, तभी युद्ध का सही स्वरूप खड़ा होता है। सारा समय जब आप कर्म व्यवहार में बिजी रहते हैं, उस समय अंदर युद्ध नहीं चलता है। लेकिन जैसे ही ध्यान में बैठेंगे कि कई प्रकार के विचार आने लगेंगे, और मन को एकाग्र करना चाहते ईश्वर की याद में, और अनेक सारे विचार जो मन के अंदर घर करने लगते हैं, तभी उसको हटाने की मेहनत जो करनी पड़ती है। और इसीलिए आज मनुष्य की शिकायत ये बनी रहती है, क्या करे, मन नहीं लगता है। ईश्वर में मन लगाना चाहते हैं, परंतु मन भटक जाता है। कहाँ जाता है, कभी उसका पीछा करके देखा कि मन जाता है तो कहाँ जाता है? तो देखा गया है कि मन हमेशा कोई न कोई कर्मेंद्रिय की चंचलता के पीछे ही जाता है। दिन भर में कोई बात ऐसी हुई हो, किसी से बात करते करते कोई बात मुख से निकल गई जो हमें उस व्यक्ति से कहनी नहीं चाहिए थी, निकल गई, स्वाभाविक रीति से। फिर कर्म में बिजी हो गए तो भूल गए, कोई बात याद नहीं आई। लेकिन जैसे ही शांत चित होकर भगवान को याद करने बैठते हैं कि उसी समय वो व्यक्ति का चेहरा याद आता है, वो बात याद आती है कि अरे ये बात हमें उसको कहनी नहीं चाहिए थी, अब अगर उसने फलाने व्यक्ति को ये बात बता दिया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएंगी, ऐसा होगा वैसा होगा। तो बैठे भगवान के सामने, मन चला गया, कहां गया? जो ये मुख ने चंचलता की उसके पीछे गया। कई चीजें हम अपने कानों द्वारा सुन लेते हैं, सुनते समय स्वाभाविक रीति से सुन लेते हैं, फिर कर्म में बिजी हो जाते तो बात ख्याल में नहीं आती है, लेकिन जैसे ही शांत चित होकर भगवान को याद करने बैठेंगे उसी समय वो बात याद आएंगी। ये उसने ये बात जो कही उसका मतलब क्या था? जरूर यही भाव था, ऐसे ही भाव था, उस बात के कॉन्टेक्स्ट में उसने ये बात, सारा मतलब और भाव निकालना शुरू करते। बैठे भगवान को याद करने, मन चला गया, कहां गया? ये कानों ने जो चंचलता की उसके पीछे गया। कोई चीज आंखों द्वारा देख ली, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं गलत हो ही नहीं सकती हूं, मन चला गया, कहां गया? ये आंखों ने जो चंचलता की उसके पीछे गया। तो युद्ध का सही स्वरूप तभी खड़ा होता है कि जब हम ध्यान में बैठते हैं और उसी वक्त काम, क्रोध, राग, द्वेष, आशा, तृष्णा आदि विकार बाधा के रूप में भयंकर आक्रमण करते हैं। तो ये युद्ध है अंदर ही, इनको मिटाते हुए अंतरात्मा में सिमटते जाना और ध्यानस्थ होते जाना ही यथार्थ युद्ध है। जो दोष दृष्टि रहित होकर श्रद्धा के साथ इस युद्ध में रत रहता है वह कर्म के बंधन से छूट जाता है। इन सब से अगर ऊपर ले चले बुद्धि को, ध्यान भी लगने लगेगा। जिसने कर्मेंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है, जीत प्राप्त कर लिया है, वह बंधन से भी छूट जाएगा, कर्म भी उनके स्वतः श्रेष्ठ होने लगेंगे और मन विचलित नहीं होगा। तब अर्जुन का एक महत्वपूर्ण सवाल कि हे प्रभु, मनुष्य किससे प्रेरित होकर के पाप का आचरण करता है? जो अर्जुन के सवाल थे, आज के मनुष्य के भी यही सवाल है कि मनुष्य किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। तो भगवान ने बहुत सुंदर जवाब दिया, रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध अग्नि के समान है जो राग द्वेष के पूरक है। ये ज्ञानियों के निरंतर बैरी है, काम से ज्ञान ढका हुआ है, मन बुद्धि इंद्रियां इसके वास स्थान है। कहां रहते ये विकार? तो मन बुद्धि इंद्रिय इसके वास स्थान है, ये निरंतर बैरी है। और वास स्थान कहां है? भीतर ही है, बाहर नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को संयत कर, उसके ऊपर अधिकार प्राप्त कर, क्योंकि यह हृदय देश की अंतर जगत की लड़ाई है। ये स्पष्ट कर देते हैं भगवान कि यह स्थूल लड़ाई है ही नहीं, ये अंतर जगत की लड़ाई है। जो इंद्रियों को वश करता है वही ज्ञान विज्ञान से पाप का नाश कर सकता है। तो इसीलिए भगवान ने बता दिया कि रजोगुण से उत्पन्न ये काम और क्रोध, राग द्वेष उसके पूरक और मन बुद्धि इंद्रियां उसके वास स्थान। जो इंद्रियों को भटकाती रहती है, चंचलता मचाती रहती है और इसीलिए ध्यान नहीं लगता है। तब अर्जुन का पुनः एक महत्वपूर्ण सवाल हम सब की तरह, क्या हम मन बुद्धि और इंद्रियों को संयत कर पाएंगे? क्या उसको वश करना सहज है? है, ये सभी का सवाल है मन का, कि क्या मन बुद्धि इंद्रियों को हम डिसिप्लिन में ला सकते हैं? तो बहुत सुंदर भगवान जवाब देते हैं कि अर्जुन इस शरीर से परे इंद्रियां हैं और इंद्रियों से परे मन है जो सूक्ष्म है, मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे तुम स्वयं सूक्ष्म बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा हो। स्वयं के आत्म बल को समझो, आत्मा का बल क्या है उसको समझकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में कर इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मारो। किसको मारने की बात है? कोई व्यक्ति को मारने की बात नहीं कही भगवान ने, लेकिन ये काम रूपी दुर्जय शत्रु को मारो, इंद्रियों के द्वारा यही आत्मा को मोहित करता है। भावार्थ ये कि भगवान कभी हिंसक युद्ध की प्रेरणा दे ही नहीं सकता है। जैसे आज के युग के अंदर मान लो कि आपका बच्चा है और बच्चा गली में मोहल्ले में खेल रहा है दूसरे बच्चों के साथ, और कोई बच्चा बड़ा शैतान है, हर बार आपके बच्चे को परेशान करता रहता है, चीटिंग करता है, उसका मजाक उड़ाता रहता है, और आपका बच्चा रोते हुए आपके पास आता है कि ये बच्चा मुझे बहुत परेशान करता है, खेलने नहीं देता है मुझे, मेरा मजाक उड़ाता है, रोता हुआ जब आपके पास रोज अगर आए यही कंप्लेन लेकर, तो आप उसको क्या कहेंगे? अरे मारो गोली, उसके साथ तुम खेलने क्यों जाता है, यही कहेंगे ना। अब मारो गोली उसको, उसका मतलब ये नहीं है कि सचमुच कोई बंदूक उठाकर गोली मारने की बात की है, लेकिन भावार्थ ये है कि उसको छोड़ो, तुम नहीं खेलो उसके साथ, तुम खेलने ही जाता क्यों है उसके साथ में, जब रोज रोज ये तंग करता है तो मारो गोली उसको। बहुत सारे बच्चे तुम दूसरों के साथ खेलो। ठीक इसी तरह भगवान ने भी अर्जुन को कहा मारो इन सबको। मारो का मतलब कोई सचमुच हथियार उठा के मारने की बात थोड़ी की है भगवान ने, लेकिन ये अंतर जगत की लड़ाई है कि तुम अपनी इंद्रियों को सेल्फ डिसिप्लिन में ले आओ, और सेल्फ डिसिप्लिन में ले आएंगे तो अपने आप तुम्हारा मन बुद्धि सब ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बहुत सुंदर उदाहरण याद आता है जो भगवान ने कहा कि अर्जुन इस शरीर से परे इंद्रियां हैं, इंद्रियों से परे मन है जो सूक्ष्म है, और मन से परे बुद्धि है, और बुद्धि से परे तुम स्वयं सूक्ष्म बलवान अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा हो। इसलिए अपने आत्म बल को समझते हुए बुद्धि द्वारा मन को वश में करो। ये उदाहरण बहुत सुंदर याद आता है कि एक बार एक राज्य में एक व्यक्ति आया जिसके पास एक बहुत पुष्ट घोड़ा था, इतना बलवान घोड़ा था, हुष्ट पुष्ट एकदम, परंतु कोई उस घोड़े को वश नहीं कर पाता था, बड़ा तूफानी था। तो जब उस राज्य में आया तो उसने राजा से बात की, राजा से कहा कि हे राजन, मेरे पास एक घोड़ा है लेकिन ये घोड़े को कोई वश नहीं कर पा रहा है, और जो उसको वश कर लेगा मैं उसको ये घोड़ा इनाम के रूप में दे दूंगा। राजा ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारे राज्य में एक से एक उस्ताद है घोड़े को वश करने वाले। कहा ठीक है। राजा ने समय दे दिया कि भाई आज दिन में सभी इकट्ठे हो जाए, सारे उस्ताद इकट्ठे हो जाए, घोड़े को वश करना है, और जो इस घोड़े को वश कर देंगे उसको वो घोड़ा इनाम के रूप में मिल जाएगा। सारे उस्ताद वहां जमा हो गए, सभी ने प्रयत्न किया उसको वश करने का, लेकिन घोड़ा वश नहीं हो रहा था। सामने से जाते थे तो एकदम उछलता था, पीछे से जाते थे तो भी लात मार देता था, नजदीक तक नहीं आने देता था। तो उस समय जब सारे उस्ताद निराश होकर के बैठने लगे, राजा को बड़ा आश्चर्य लगा कि क्या हमारे राज्य में एक भी उस्ताद ऐसा नहीं जो ये घोड़े को वश कर सके। काफी देर से राजकुमार बैठे बैठे देख रहा था। राजकुमार ने राजा से कहा, मैं इस घोड़े को वश करना चाहता हूं। राजा ने कहा, जब इतने बड़े बड़े उस्ताद वश नहीं कर पाए तो आप तो कैसे वश कर पाएंगे। कहा, आप मुझे स्वीकृति दो, मैं वश कर सकता हूं, ऐसा मुझे विश्वास आ रहा है अंदर से। ठीक है। काफी देर से राजकुमार देख रहा था कि घोड़े को जिस दिशा में खड़ा किया गया था परछाई गिरती थी, और वो परछाई देख करके भड़क रहा था। इसलिए जो कोई नजदीक जाने का प्रयत्न करता था, चाहे आगे से चाहे पीछे से चाहे कहीं से भी, तो भी घोड़ा उस परछाई को देख करके भड़क उठता था और नजदीक नहीं जाने देता था। राजकुमार ने क्या किया कि सबसे पहले घोड़े की दिशा को परिवर्तित किया और उस दिशा में खड़ा किया उसको, परछाई पीछे गिरे, और फिर जाकर के उस घोड़े के ऊपर चढ़ गया। जब उसको परछाई दिखी नहीं तो बैठ गए और सबसे पहले लगाम खींच लिया, घोड़े को वश कर लिया। ठीक इसी तरह हमारा मन भी एक घोड़ा है, इस घोड़े को वश करना है, लेकिन घोड़े को वश करने में बड़ी मेहनत आ रही है। सबसे पहले हमें भी यही करना है कि घोड़े को वश करना हो तो उसकी दिशा परिवर्तित कर दो। आशाएं, ममताएं, इच्छाएं, तृष्णाएं, आसक्तियां, ये सारी परछाई के रूप में है, और जैसे ही घोड़ा ये परछाइयों को देखता है तो भड़कता रहता है, उछलता रहता है। इसलिए इनको पीछे कर दो, और जैसे ये परछाई पीछे हो जाएगी उसके बाद उस पर चढ़ करके सबसे पहले बुद्धि की लगाम से घोड़े को वश करो। इसलिए कहा, बुद्धि के द्वारा तुम मन को वश में करो। तुम श्रेष्ठ अति सूक्ष्म बलवान आत्मा है, तो आत्म बल को समझते हुए आत्मा की कैपेसिटी क्या है, उसकी पोटेंशियल क्या है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, वो सात गुण ये समझते हुए, आत्म बल को समझते हुए फिर बुद्धि के द्वारा मन को वश करो, और ये काम रूपी दुर्जय शत्रु को मारो। काम माना कामनाएं, इच्छाएं। इच्छाओं को अगर प्राथमिकता देंगे तो घोड़ा कभी वश होने वाला नहीं है, लेकिन आप कर्म को प्राथमिकता देते जाओ, आत्म बल को समझते हुए सतो गुण के आधार पर कर्म करने लगो, तो बुद्धि द्वारा मन को वश करना सहज हो जाएगा। ये इंद्रियां हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। ये विधि है ये मन रूपी घोड़े को वश करने की, और तभी हम उसके ऊपर सवारी कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं जीवन के अंदर भी। और फिर चौथे अध्याय में भगवान ने ज्ञान कर्म संन्यास योग बताया, और उसमें भी कई अर्जुनों के सवालों का जवाब दिया है। सबसे पहला सवाल जब अर्जुन का था कि हे प्रभु, ये ज्ञान आपने सबसे पहले किसको दिया, तो भगवान कहते हैं, इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में मैंने सूर्य से कहा, सूर्य से मनु को यही गीता ज्ञान प्राप्त हुआ, मनु ने अपनी स्मृति में उसको संजोया, मनु से इक्ष्वाक को मिला जिसे राज ऋषियों ने जाना, किंतु इस महत्वपूर्ण काल में वो लुप्त हो गया। अब सूर्य को मिला, सूर्य से मनु को मिला, भावार्थ यह है कि सूर्य को नहीं दिया जाता है, लेकिन सूर्य वंशी घरानों को सूर्यवंशी घराने की जो आत्माएं थी सत्ययुग के अंदर, जो देवी देवताएं सूर्यवंशी थे, उन सूर्यवंशी आत्माओं को प्राप्त हुआ। मनु यानी चंद्र, सूर्यवंशी आत्माओं से चंद्रवंशी आत्माओं को मिला ये ज्ञान, और उन्होंने अपनी स्मृति में संजोया और वहां से इक्ष्वाक को यानी द्वापर युग में, इक्ष्वाक यानी जो इच्छाओं के अधीन हो गए, ऐसे राज ऋषियों ने जाना। लेकिन द्वापर के बाद जब मनुष्य आत्माएं कलयुग के अंदर काम क्रोध आदि विकारों को महत्व देने लगे और तुरंत रिद्धि सिद्धि की चाहना करने लगे, तो इस महत्वपूर्ण काल में वो लुप्त हो गया। ये भाव था सूर्यवंशी आत्माएं, अर्थात आत्मा स्वयं प्रकाशित है जो सूर्य के समान है। इसलिए कहा कि आरंभ में विवश्वान मनुष्य, विवश्वान माना जो संस्कार रहित पुरुष की सूरा में जो स्वयं प्रकाशित आत्मा है, सूर्य स्वयं प्रकाशित है, ऐसी आत्माओं को दिया गया। वो आत्माओं ने मन में, मन की स्मृतियों में उसको संजोया, मन से इच्छा में और इच्छा से इच्छा तीव्र होकर संस्कारों में ढलकर यह योग क्रमशः आचरण तक भी पहुंचता है। उस अवस्था में रिद्धि सिद्धियों का संचार होता है जिसके प्रभाव के कारण वो लुप्त होने लगता है। जब मनुष्य रिद्धि सिद्धियों के पीछे लग जाता है तो मेहनत करना नहीं चाहता, पुरुषार्थ करना नहीं चाहता, तो वो ज्ञान लुप्त हो जाता है। उस ज्ञान का प्रयोग नहीं करते हैं जीवन के अंदर, क्योंकि रिद्धि सिद्धि के द्वारा जीवन के अंदर सहज प्राप्ति करना चाहते हैं। यानी ये कलयुग तक भी आता है लेकिन उसके बाद वो लुप्त होने लगता है। और बार बार भगवान कल्प के आदि में ऐसे विवश्वान मनुष्य को फिर देता है ये ज्ञान। यानी हिस्ट्री मस्ट रिपीट, ये चक्र रिपीट होता है। जैसे कहा महाभारत के अंदर कि जब घर घर में महाभारत हो जाएगा तब समझना महाभारत काल पुनः आ गया। तो इस तरह एक चक्र है, ये काल चक्र है, और ये काल चक्र रिपीट होता है, तभी भगवान बार बार विवश्वान मनुष्य को देता है। फिर वो चलता रहता है, उस ज्ञान की प्रालब्ध चलती जाती है, और फिर अंत में जैसे रिद्धि सिद्धि का संचार होने लगता तो लुप्त हो जाता है। वह सतगुरु परमात्मा अपने अनन्य भक्त आत्माओं के आश्रित है, विवश्वान मनुष्य को देता है, यानी उन भक्त आत्माओं के आश्रित है। वह जिस सतह पर खड़े हैं उसी स्तर पर रथी बनकर उत्तम अविनाशी रहस्य योग का वर्णन कर उन डगमगाते भक्तों को संभालते हैं। भगवान ही ऐसे भक्तों को संभालते हैं, तभी उनका मन वश में हो पाता है। तब अर्जुन का पुनः एक महत्वपूर्ण सवाल होता है कि क्या यह उत्तम रहस्यपूर्ण योग का वर्णन करने हेतु आप सबकी तरह पैदा होते हो, जन्म लेते हो? भगवान से पूछते हैं ये सवाल। तो उस समय भगवान ने कहा, नहीं, स्वरूप की प्राप्ति शरीर प्राप्ति से भिन्न है। तुम सब शरीरों को प्राप्त करते हैं, मैं अपने स्वरूप को रचता हूं। मेरा जन्म इन आंखों से देखा नहीं जा सकता है। भगवान कहते हैं, मेरा जन्म इन आंखों से देखा नहीं जा सकता है। मैं अजन्मा, अव्यक्त, शाश्वत हूं। मैं विनाश रहित, पुनर्जन्म रहित प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता। मेरा स्वरूप का जन्म पिंड रूप में नहीं होता है, यानी मैं किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेता। अब ये महावाक्य श्री कृष्ण तो बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण का तो जन्म भी हुआ, मृत्यु भी हुई, पुनर्जन्म भी हुए, जबकि भगवान कहते हैं कि मेरे स्वरूप का जन्म नहीं। कोई पिंड रूप में जन्म नहीं होता है, योग साधना द्वारा अपनी त्रिगुणामय प्रकृति को स्ववश करके मैं प्रकट होता। परमात्मा ने जब कहा कि मैं अजन्मा हूं, अव्यक्त, अव्यक्त माना मुझे कोई व्यक्त आकृति वाला शरीर नहीं है, तो वो अव्यक्त स्वरूप कौन सा है? अजन्मा, अव्यक्त, शाश्वत, विनाश रहित, पुनर्जन्म रहित, ये सारी क्वालिटीज उसकी बता दी। तो वो स्वरूप कौन सा होगा? तो जैसे पक्षियों का पिता पक्षी है, पशुओं का पिता पशु है, मनुष्य का पिता मनुष्य है, तो आत्मा का पिता परमात्मा है। जैसे आत्मा अजन्मा अव्यक्त है, शरीर में प्रवेश करती है तब व्यक्त स्वरूप को धारण कर लेती है, वैसे उसके पिता परमात्मा भी अव्यक्त है, अजन्मा है। तो वो कौन सा स्वरूप? आत्मा का स्वरूप कैसा है? आत्मा का स्वरूप आज सुबह आपने देखा होगा कि आत्मा का स्वरूप कैसा है? प्रकाश पुंज, ज्योति पुंज। इसलिए व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो ज्योत जलाई जाती है। तो आत्मा का स्वरूप अगर ज्योति स्वरूप है, तो उसके पिता का स्वरूप कैसा होगा? वो भी ज्योति स्वरूप है, जिसकी पूजा भारत में ज्योतिर्लिंगम के रूप में करते हैं। ज्योतिर्लिंगम माना जो ज्योति की आकृति है, इसलिए शिव के साथ एक शब्द जुड़ता है, शिव शंभु। शंभु का ओरिजिनल शब्द है स्वयंभू। स्वयंभू माना जो स्वयं प्रकट हुआ है, जिसको उत्पन्न करने वाला कोई माता पिता नहीं है, और जिसको नाम दिया सदा शिव, यानी जो सदा कल्याण करने वाले। तो भारतवासी ने 12 ज्योतिर्लिंगम आज भी भारत के अंदर महान तीर्थ स्थान माने जाते हैं। वही स्वरूप की प्रतिमा की यादगार मुसलमान धर्म में भी है। मुसलमान धर्म में भी जब मक्का हज यात्रा पर जाते हैं तो वहां काबा का पवित्र पत्थर है, जिस पत्थर के पीछे कहानी है। और कहानी यही है इस दिव्य पत्थर की कि पहले मुसलमान धर्म में भी मक्का में 360 देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी, हर एक के अपने अपने इष्ट होते थे, 360 देवी देवताओं की मूर्तियां थी। परंतु जब मोहम्मद पैगंबर साहब आए तब उन्होंने कहा अल्लाह एक है। काफी रिवॉल्ट हुआ उस समय, खून खराबा हुआ कि ये कौन है जो कहता है कि अल्लाह एक है, तो हमारे ये इष्ट कौन है फिर? और इस रिवॉल्ट में कहा जाता है कि एक आकाशवाणी हुई कि आप लड़ाई झगड़ा मत करो, खून खराबा मत करो, मुझे इस स्वरूप में याद करो, और ऊपर से वो पत्थर गिरा, इसलिए उसको काबा का पवित्र पत्थर कहा जाता है। और उसी समय उसकी स्थापना मक्का में की गई, और उसी समय वो 360 देवी देवताओं की जो मूर्तियां थी उन सब मूर्तियों को नष्ट कर दिया गया। और तब से लेकर के यही मान्यता रही कि अल्लाह एक है। वहां जब मुसलमान लोग जाते हैं तो क्या करते हैं? अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं, शैतान को पत्थर मारते हैं, इस दिव्य पत्थर को चूमते हैं और अंत में अपनी बंदगी में एक लाइन जरूर कहते हैं, जिस लाइन के बिना उनका हज पूरा नहीं होता है। और वो लाइन है, हे परवरदिगार, परमेश्वर के लिए कहा है, हे परवरदिगार नूरे इलाही, मेरा हज कबूल हो, तब उनका हज कबूल होता है। उन्होंने कहा अल्लाह नूर है। नूर का मतलब, नूर माना रोशनी, प्रकाश, तेज। ज्योति मतलब ज्योतिर्लिंगम, हमने कहा तो ज्योति माना प्रकाश, नूर माना भी प्रकाश, ज्योति माना भी प्रकाश, तो बात एक ही है या अलग है? और आगे जाए, क्रिश्चियन धर्म के अंदर कहा जाता है कि मोसेस जब माउंटेन पर गए जहां उनको 10 कमांडमेंट्स मिले, उस समय उन्हें अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ, जिस ज्योति को देखकर उसने कहा यहोवा, द सुप्रीम लाइट। क्राइस्ट ने कभी अपने आप को गॉड नहीं कहा, उसने हमेशा यही कहा गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड। और इसलिए अपनी अंतिम प्रार्थना में भी उसने भगवान से यही कहा कि हे प्रभु आप इन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि उन्हें पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। आज भी वेटिकन सिटी अगर चले जाएं, जो पोप की गद्दी है, उस वेटिकन सिटी में चर्च में किसी व्यक्ति की प्रतिमा आपको नहीं मिलेगी, लेकिन अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा का दिव्य स्वरूप प्राप्त होगा, जिसको क्रिश्चियन ने लाइट कहा, मुसलमानों ने नूर कहा, हिंदुओं ने ज्योति कहा। बात एक ही है या अलग है? एक ही है। और आगे जाए, गुरु नानक देव ने बड़े स्पष्ट शब्द में कहा, एक ओमकार निराकार निर्वैर सतनाम अकाल मूरत जोनी, बहुत सुंदर रीति से महिमा गाई है परमात्मा की, जितना स्पष्ट किसी ने नहीं किया। और इसीलिए दिखाते, गुरु गोविंद सिंह जी ने भी शिव की महिमा गाई थी। और आगे जाए, महावीर स्वामी ने किसका ध्यान किया? जैन धर्म में 24 तीर्थंकर दिखाते हैं, और 24 तीर्थंकर सभी को ध्यान मुद्रा में दिखाया गया है। किसका ध्यान कर रहे हैं? उन्होंने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, उन्होंने परमात्मा को उस निराकार स्वरूप में ही दर्शाया, और यही कहा उसको सिद्ध शिलापति जो सर्वश्रेष्ठ है। आज भी जैनी लोग जब महावीर स्वामी के निर्वाण दिन पर प्रार्थना करते हैं तो यही कहते हैं कि आपने जो शिव धाम को प्राप्त किया वो गति हमें भी प्राप्त हो। वो शिव धाम कौन सा है? शिव कौन है? महात्मा बुद्ध ने किसका ध्यान किया? आज भी जापान चले जाओ, 3 फुट की ऊंचाई पर 3 फुट दूर बैठ के एक थाली के अंदर लाल पत्थर रखा जाता, जिसको कहते करनी का पवित्र पत्थर, जिसको नाम दिया गया है चिंकोन शेकी। चिंकोन शेकी माना जो शांति का दाता है। और इसीलिए उसके सामने बैठकर मेडिटेशन करते हैं कि हमारा माइंड पीसफुल हो जाता है, शांति मिलती है। पारसी लोग जब ईरान से भारत आए थे तो जलती हुई ज्योत को लेकर के आए थे, और आज भी जब उनका नया मंदिर स्थापित होता है, अग्यारी जिसको कहते हैं, वहां अखंड ज्योत निरंतर जलती रहती है, तो सर्वधर्म मान्य एक ही है। जिसको किसी ने गॉड कहा, अल्लाह कहा, ईश्वर कहा, प्रभु कहा, मालिक कहा, जो भी कहा है, तो वो एक ही ना। नाम अलग अलग है, स्वरूप हर धर्म में एक ही है, जिसके लिए भगवान ने अर्जुन को कहा कि मैं अजन्मा हूं, अव्यक्त हूं, मेरा स्वरूप का जन्म पिंड रूप में नहीं होता है, मैं स्वयंभू हूं, मेरा जन्म इन आंखों से देखा नहीं जा सकता है। तब अर्जुन का दूसरा सवाल कि हे प्रभु आप किस परिस्थिति में और कब प्रकट होते हैं, इस संसार में कब आते हो, किन परिस्थितियों में आते हो। तब भगवान ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य, यानी जब जब, हर बार आता हूं ये नहीं कहा, मैं सर्वव्यापी हूं ये भी नहीं कहा, कहा जब जब परम धर्म और परमात्मा के प्रति हृदय ग्लानी से भर जाता है, जब अधर्म की वृद्धि हो जाती है, तब तब मैं अपने स्वरूप को रचता हूं। हर युग की बात ही नहीं आती है, जब जब तब तब मैं स्वयं अवतरित होता हूं। और यहां अवतरण से अभिप्राय पुनर्जन्म लेना नहीं है, अपितु पुनः अपने स्वरूप को प्रकट करना। और तब आगे कहते हैं किन परिस्थितियों में कब, तो कहा परित्राणायाम साधु नाम, यानी परम साध्य परमात्मा के समीप ले जाने वाले विवेक वैराग्य और दैवी संस्कारों को निर्विघ्न प्रवाहित करने इस संसार के अंदर, और दुष्कृत्य के कारक काम क्रोध राग द्वेष इत्यादि विकारों का पूर्ण विनाश करने के लिए, और परम धर्म सनातन धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए ऐसे युगे युगे आता। तो कब परमात्मा को आना चाहिए, कब आना चाहिए, आपका विवेक क्या कहता है, कब आना चाहिए? सत्ययुग में आना चाहिए, त्रेता में आना चाहिए, द्वापर में आना चाहिए, कलयुग में आना चाहिए? कलयुग में ही आना चाहिए। अगर भगवान द्वापर युग में आए और अधर्म का नाश कर दे और सत धर्म सनातन धर्म की स्थापना करके जाए, तो द्वापर के बाद तो कलयुग आया, घोर अधर्म का युग, तो क्या गीता के ज्ञान से घोर अधर्म के युग की स्थापना हुई? इसलिए कहा, वो कहानी जो शुरू में ही मैंने बताई कि 50 विद्यार्थियों को खड़ा कर दिया जाए और हर एक के कान में एक मैसेज दिया जाए, परिवर्तित हो जाता है। तो इसी तरह परमात्मा के संसार में अवतरण के समय का भी परिवर्तन हो गया कि वास्तव में वो आते हैं कलयुग के अंत में, जब अधर्म चरम सीमा पर है, उस समय वो आकर के अधर्म का नाश और एक सनातन धर्म की स्थापना, सतयुग की स्थापना करके जाते हैं। तब तो बात बैठती है गीता के भगवान की कि हां परमात्मा अधर्म का नाश और एक सत धर्म की स्थापना करते हैं। युग का तात्पर्य यहां सत्ययुग त्रेता युग नहीं है, लेकिन जब संसार में तामस गुण भरपूर हो जाते हैं और चारों ओर वैर विरोध हो, जब तामसी गुण ही कार्य करते हैं और मनुष्य में आलस्य निद्रा प्रमाद का बाहुल्य हो जाता है, मनुष्य कर्तव्य को जानते हुए उसमें प्रवृत्त नहीं हो सकते हैं, निषिद्ध कर्म को जानते हुए उससे निवृत्त नहीं हो सकते हैं, इस प्रकार युग धर्म के उतार चढ़ाव पर परमात्मा प्रकट होते हैं, ऐसे समय पर आते हैं। तो हर युग की बात ही नहीं है, लेकिन कलयुग के अंत में ही भगवान आते हैं और आकर के अपना दिव्य कार्य करते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, अलौकिक है, जो इन चरम चक्षुओं से देखा नहीं जा सकता है। तब अर्जुन का पुनः एक सवाल कि हे प्रभु, तो कौन उसे देख सकता है और समझ सकता है? ये तो हम सब का भी सवाल आएगा ये बातें सुन करके कि अगर भगवान को ये चरम चक्षु से देखा नहीं जा सकता है, तो कैसे देख सकते समझ सकेंगे? तब भगवान कहते केवल तत्वदर्शी यानी ज्ञान और तपस्या के द्वारा जो पवित्र बनते हैं और वितराग भय और क्रोध से मुक्त होते हैं, वे मेरे इस जन्म और कर्म को देखता है और मेरा साक्षात्कार कर सकता है। आत्म साक्षात्कार करने वाला ही इस अवीर्य भाव को समझ पाता है कि परमात्मा किस वितरागी में अवतरित होते हैं, किसमें आते हैं, तभी समझ सकते हैं, नहीं तो नहीं समझ सकते हैं। और इसीलिए अब तक अर्जुन श्री कृष्ण को देख करके वही समझता रहा कि ये तो मेरे दोस्त है, मित्र है, मित्र भाव रहा। लेकिन जब भगवान ने ये बात कही कि मेरा जन्म इन आंखों से देखा नहीं जा सकता है, मेरे कर्म को भी तुम नहीं देख सकते हैं, तब अर्जुन का दिमाग ठनका, तो फिर ये कौन बोल रहा है जिसको मैं देख रहा हूं, वो कौन है फिर, और ये बोलने वाला कौन है फिर। फिर भगवान आगे इस अध्याय में कहते कि हे अर्जुन, कर्मों की गति अति गुह्य है। बात को थोड़ी चेंज कर दिया यहां भगवान ने, अपने स्वरूप के बात बारे में कहने के साथ साथ। इसलिए हे अर्जुन, तुम कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसको समझना आवश्यक है, क्योंकि तभी तुम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते। पहले आत्मा का ज्ञान दिया, स्वधर्म का परिचय कराया, फिर परमात्मा ने चौथे अध्याय में अपना परिचय दिया, और हर बार कर्म के साथ उसको जोड़ा गया है। आत्मा का ज्ञान, स्वधर्म के आधार पर भी कर्म करने की आवश्यकता क्या है, और परमात्मा के ज्ञान के साथ भी कर्म करने का महत्व क्या है, उसको जोड़ा गया। और बहुत सुंदर बात कही है यहां कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह बुद्धिमान योगी है, जिसके कर्म का आरंभ और फल की प्राप्ति में कामना का त्याग है तथा सांसारिक आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा की याद में नित्य तृप्त है, उसके कर्मों में कोई त्रुटि नहीं होती है। भगवान की याद में जो कर्म करेंगे उन कर्मों में कोई त्रुटि नहीं होगी, वह ज्ञान रूपी अग्नि से विकर्मों को भी भस्म कर देता है। अब जब यहां ये कहा कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, और भगवान कहते कर्म में अकर्म और कर्म अकर्म में कर्म देखता है, वो बुद्धिमान है, अर्थात क्या, इसका भावार्थ क्या है। कर्म को तो हम सभी जानते हैं, अकर्म मतलब जिस कर्म के फल की प्राप्ति नहीं है, जिस कर्म करने के बाद फल नहीं मिलता है। कैसे, अगर एक उदाहरण मैं दूं कि मैंने एक आम की गुठली जमीन में रोपा, उसको रोपित किया, ये कर्म मैंने ही किया, एक बीज को बोना, ये कर्म मैं अपने हाथों से कर रही हूं, उस बीज को सींचना, पौधा निकला और उस पौधे से धीरे धीरे वृक्ष बढ़ने लगा और उस वृक्ष के ऊपर फल लगा, वो फल तोड़ के मैंने खाया, दोनों कर्म मैं ही कर रही हूं। बीज बोना ये कर्म भी मैंने किया, उसके ऊपर जो फल लगा वो फल तोड़ के खाना ये कर्म भी मैंने किया। दोनों कर्म में कोई अंतर है, दोनों कर्म में कोई अंतर है, क्या कहेंगे, दोनों कर्म में कोई अंतर है? बीज बोना भी कर्म है, फल खाना भी कर्म है, हाँ? कोई अंतर नहीं। बीज बोने का जो कर्म है ये बिगिनिंग है, शुरुआत है, और फल खाने का जो कर्म है वहां समाप्त हो जाता है। बीज बोने का कर्म जो है इतना पावरफुल है कि उससे मुझे हजारों फल की प्राप्ति होती है, लेकिन फल खाने का जो कर्म है उसका कोई दूसरा फल नहीं मिलता, सेटिस्फेक्शन, दैट्स इट एंड इट्स ओवर। फल खाने का दूसरा फल नहीं मिलता है, बीज बोने का फल मिलता है, फल खाने का कोई फल नहीं, संतुष्टि हो गई, पूरा हुआ। ठीक इसी तरह कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, तो बीज बोने का जो कर्म है वो श्रेष्ठ कर्म, वो कर्म है, सही कर्म है, क्योंकि उससे मुझे फल की प्राप्ति होने वाली है। लेकिन फल खाने का जो कर्म है वो अकर्म है। अकर्म माना जिस कर्म का दूसरा फल नहीं मिलता है, वहां वो समाप्त हो जाता, अकर्म वो कर्म की समाप्ति है। तो बुद्धिमान योगी कौन है? जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में पुनः कर्म को देखता है। भावार्थ ये कि बीज बोने का कर्म तो किया, फल खाने का कर्म करो, लेकिन फल खाने के बाद उसको फेंक नहीं दो, वो बीज को पुनः बोलो। तो अकर्म में कर्म, अकर्म में पुनः कर्म, श्रेष्ठ कर्म किया और उस फल की प्राप्ति, ये फल कोई भी खाए तो उससे बंधन नहीं बनता। इसलिए कहा जिसके कर्मों का आरंभ और फल की प्राप्ति में कामना का त्याग है, मेरे लिए ही मैं कर रही हूं ये नहीं, कोई भी स्वीकार करे इसका फल, तथा सांसारिक आश्रय से रहित हो और परमात्मा की याद में नित्य तृप्त रहे, नित्य तृप्त है, उसके कर्मों में कोई त्रुटि नहीं होगी। फिर वो ज्ञान रूपी शस्त्र से, अग्नि से विकर्म, विकर्म माना विकारों के वशीभूत किया गया कर्म, विकृत कर्म, उसको भस्म कर सकता है। किससे? श्रेष्ठ कर्म से। कर्म से अकर्म, अकर्म में पुनः कर्म, और उसमें अगर आसक्ति नहीं है तो उससे विकर्म को, यानी विकृत कर्म का खाता जो है, उसको भी हम भस्म कर सकते हैं। कितनी गुह्य गति ईश्वर ने बताई है कर्म की, कि महान बुद्धिमान योगी इस रूप में कि फल खाने के बाद भी उसमें भी श्रेष्ठ कर्म का रास्ता ढूंढ लेते हैं और पुनः बोने का कार्य कर लेता है। ये है कर्मों की गुह्य गति। और फिर भगवान को अर्जुन पूछता है कि सभी यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है, कौन सा यज्ञ हमें करना चाहिए? तो भगवान कहते हैं, अर्जुन, सर्व यज्ञों से ज्ञान यज्ञ अति श्रेष्ठ है और परम कल्याणकारी है। ये इस समय जो हम ज्ञान सुन रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? ये ज्ञान यज्ञ है। तो ज्ञान यज्ञ अति श्रेष्ठ और परम कल्याणकारी है, क्योंकि महान पाप आत्माएं भी इस ज्ञान नैया द्वारा संसार सागर को पार कर देती है। जिस प्रकार अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ज्ञान भी विकर्मों को भस्म कर देता। नॉलेज इज पावर। नॉलेज में वो शक्ति है, ज्ञान में वो शक्ति है जो विकर्मों को भी, यानी अज्ञान को ही नष्ट कर देता, जो अज्ञान ही विकृत कर्म करने का बीज है, उस अज्ञान को नष्ट कर देता। इसलिए भगवान कहते हैं कि ज्ञान यज्ञ अति श्रेष्ठ है। सर्व विकर्म एवं साधनों की आसक्ति और मोह को समाप्त कर ज्ञान और योग की परिपक्व अवस्था से आत्मा शुद्ध और पवित्र बन जाती है। ये गुह्य गति जिसने समझ लिया हो कर्म की, वो आत्मा को शुद्धि के रास्ते पर ले जा सकते हैं, और जो उसका विकर्मों का खाता है, पाप कर्मों का खाता है, उसको समाप्त कर सकते हैं। और फिर पांचवें अध्याय में बहुत सुंदर संन्यास योग की बात की गई है। और यहां पर अर्जुन का पुनः एक सवाल है। पहले सवाल पूछा ज्ञान योग श्रेष्ठ है या कर्म योग श्रेष्ठ है, अभी सवाल है संन्यास योग श्रेष्ठ है या कर्म योग श्रेष्ठ है। तब भगवान कहते संन्यास योग एवं कर्म योग दोनों ही श्रेष्ठ है, क्योंकि जो मनुष्य कर्म करता हुआ किसी के साथ न द्वेष करता है न किसी कर्म फल की चाह को चाहता है वह सन्यासी ही सदा जानने योग्य है। वह सन्यासी है। व्यक्ति को बांधने वाला या मुक्त करने वाला उसका कर्म नहीं है, परंतु उस कर्म करने की वृत्ति है। किस वृत्ति से वो कर्म किया गया है वो बंधन को क्रिएट करता है या वो हमें बंधन से मुक्त कर देता है। जहां द्वेष है, वैर है, लोभ है, कामना आदि विकारों का त्याग ही सन्यास है। भगवान ने गीता में अर्जुन को कहीं पर भी ये सलाह नहीं दी है कि तुम अपना गृहस्थ छोड़ दो, अपना कर्तव्य छोड़ दो, अपनी जिम्मेवारियों को छोड़ दो, कभी नहीं कहा। यानी गीता का ज्ञान भगवान ने जो दिया गृहस्थियों के लिए दिया है, अर्जुन के लिए। अर्जुन एक गृहस्थ आश्रम में था, उसी को ही ये ज्ञान दिया गया है कि जीवन जीना है तो कैसे जीना है, उसने बुरी वृत्तियों को कैसे छोड़ना है, क्योंकि वही बंधन में बांधने वाला है। भगवान ने कभी गृहस्थ छोड़ने की बात नहीं की है, न कर्तव्य को छोड़ना नहीं है, न जिम्मेवारियों को छोड़ना है, लेकिन उसमें रही हुई बुराइयां जो उसको छोड़ो, तो कर्म करो, जिम्मेवारी निभाओ, अपना कर्तव्य भी निभाओ, पूरा करो, लेकिन उसमें वृत्ति को साफ रखो, ये सन्यास है। और आगे इसीलिए भगवान कहते कर्म योग के बिना सन्यास की प्राप्ति ही नहीं है। जो योगयुक्त पवित्र आत्मा है और सर्व प्राणियों में आत्मा को देखते हुए उसका मन वश में होता है, ऐसे जितेंद्रिय सर्व कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म करते हुए भी स्वयं को उससे भिन्न समझता है, मालिक समझता है, इंद्रियों का कंट्रोलर समझता है। जो व्यक्ति अनासक्त भाव से अपना कर्तव्य करता है और उसके सभी फल परमात्मा के प्रति समर्पित कर देता है, वह कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से निर्लिप्त रहता है। जिस प्रकार कमल जल से निर्लिप्त रहता है, वैसे कर्म योगी का हर कर्म आत्म शुद्धि के लिए ही होता है। वह पुरुष नौ द्वार वाले देह में रहते मन बुद्धि संस्कार पर भी अधिकार प्राप्त कर परम शांति एवं सुख का अनुभव करता है। बहुत सुंदर एक बात याद आती है राजा जनक की, कि राजा जनक ने एक बार कहा कि मुझे जीवन मुक्ति का ज्ञान चाहिए, कि जीवन में रहते हुए कमल की तरह मैं मुक्त कैसे रह सकूं, ये ज्ञान मुझे कोई एक सेकंड में दे। बड़े बड़े विद्वान आए राजा के दरबार में, राजा जनक के दरबार में उसको ज्ञान देने के लिए, लेकिन जैसे ही वो ज्ञान देना प्रारंभ करते थे राजा जनक कहते थे मुझे लेक्चर नहीं चाहिए, मुझे एक सेकंड में प्रैक्टिकल कोई बताए कि जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है, जीवन में रहते मुक्ति की अवस्था क्या है। तब कहा जाता है कि विद्वानों की सभा थी, जब कोई राजा को एक सेकंड में नहीं बता सका उस समय कहा जाता अष्टावक्र ने प्रवेश किया। अष्टावक्र जी वहां आते हैं, उसके बॉडी के शेप को देखते हुए सारे विद्वान हंसते हैं। तब अष्टावक्र ने राजा से कहा कि हे राजन, मैं तो समझता था कि तुम्हारी सभा में विद्वान बैठे हैं, लेकिन ये आज मैं क्या देख रहा हूं, ये तो चमार बैठे हैं। सभी विद्वान को चमार कह दिया, सभी विद्वान बड़े क्रोधित हो गए, हमें चमार कैसे कहता है। तब अष्टावक्र कहते ये मेरी चमड़ी को देख रहे हैं, आत्मा को नहीं देखते हैं, कि आत्मा भी कितनी विद्वान हो सकती है, इसलिए हंस रहे हैं मेरे ऊपर। सब शांत हो गए। अष्टावक्र ने राजा से कहा मैं ज्ञान दूंगा लेकिन अभी नहीं, समय पर दे दूंगा, प्रैक्टिकल चाहिए ना आपको, समय पर दे दूंगा। सभा विसर्जित हुई, सभी जाने लगे। राजा ने भी अपना घोड़ा मंगाया कि थोड़ा सैर करके आते हैं। और जैसे ही राजा घोड़े पर चढ़ने लगा, एक पैर घोड़े के उस पर रखा हुआ था, एक पैर जमीन पर था, कि दूर से अष्टावक्र ने आवाज लगाई, ठहरो राजन, इस वक्त कहां हो। राजा सोच में पड़ गया, एक पैर जमीन पर, एक पैर घोड़े पर, न मैं जमीन पर हूं न मैं घोड़े पर हूं। अष्टावक्र कहते, यही जीवन मुक्ति का ज्ञान है। कहिए कैसे हैं? तो कैसे, जैसे जमीन पर होते हुए जमीन पर नहीं हो, घोड़े पर होते हुए घोड़े पर नहीं हो, इस तरह संसार में रहते हुए संसार की बुराई आप में न हो, ये है जीवन मुक्ति का ज्ञान। राजा जनक को तब ये जीवन मुक्ति का ज्ञान प्राप्त हुआ और उसी आधार से अपने जीवन को चलाने लगे, राज्य को चलाने लगे, इसलिए एक महान राजा बन गए। भावार्थ ये कि भगवान ने जो कहा, सन्यास कोई चीज वस्तु कर्म का नहीं करना है, लेकिन सन्यास करना है तो बुरी वृत्तियों का सन्यास करना है, बुराइयों का सन्यास करना है। और गीता का उपदेश यही बात को लेकर के बार बार हमारे सामने आता है कि गीता एक ऐसी माँ है, गीता माता उसको कहा, ऐसी माता है जो जैसे माँ बच्चों के संस्कारों में बुराइयां जो होती है उसको निकालने में सक्षम होती है, इसी तरह गीता का ज्ञान भी हमारे अंदर की बुराइयों को खत्म करने के लिए सक्षम है। यहाँ आगे इस अध्याय में भगवान ने बहुत सुंदर बात कही है, पांचवें अध्याय में, परमात्मा मनुष्य में कर्तापन नहीं रचता है, न कर्मों को रचता है और न कर्म फल के संयोग को रचता है, परंतु स्वभाव में स्थित प्रकृति के दबाव के अनुसार सब बरतते। प्रकृति माना सात्विक, राजसिक, तामसिक, जिसमें जो प्रकृति है उसी के दबाव में आकर के हरेक कर्म करता है, बरतता है। भावार्थ ये कि आज दिन तक हम यही मानते रहे कि हमारे कर्मों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो कहते भगवान रिस्पॉन्सिबल है, भगवान ही सब कुछ करता है। कई लोग तो वहां तक कह देते, भाई ये हाथ उठता है तो भी भगवान की मर्जी से उठता है, पत्ता झाड़ का हिलता है तो भी भगवान की मर्जी से हिलता है, भगवान की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सके, है ना, यही कहते हैं ना। भावार्थ ये कि भगवान सचमुच क्या करता है और क्या नहीं करता है, सोचने की बात है। दुनिया में करोड़ों पत्ते हैं, करोड़ों वृक्ष है, क्या भगवान बैठ के एक एक पत्तों को हिलाता रहेगा? यही काम है उसका, ऊंचे से ऊंची हस्ती का काम खाली पत्ते हिलाने का है। अच्छा, ये हाथ उठा भगवान की मर्जी से उठा, और ये हाथ ने जाकर किसी को थप्पड़ मारा तो क्या कहेंगे, भगवान की मर्जी हुई? तो भगवान क्या करता है और क्या नहीं करता है, भगवान ने स्पष्ट गीता में कहा, परमात्मा मनुष्य में कर्तापन नहीं रचता है, मनुष्य खुद करता है, न ही कर्मों को रचता है और न ही कर्म फल के संयोग को रचता है, कहीं पर भी उसका इंटरफियरेंस नहीं है। हर इंसान का जन्म जब होता है तो ईश्वर द्वारा उसको दो गिफ्ट मिलती है, कौन सी? पहली गिफ्ट उसको मिलती है बुद्धि। बुद्धि की एक बहुत पावरफुल गिफ्ट है जो सही गलत को अच्छी तरह पहचान सकती है, और दूसरी गिफ्ट मिलती है फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ चॉइस। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें समझ है, बुद्धि है, अब तुम करो। तो भगवान ने बुद्धि दी, फ्रीडम दी, अब हमें खुद करना है। इसीलिए हमारे कर्मों के लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल है, हमारे कर्मों के लिए भगवान रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसीलिए तो कहा जाता है, जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा भरेगा, कहते हैं ना ये, माना हमारे कर्मों के लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल है और ये जिम्मेवारी हमें उठानी ही चाहिए। भगवान एक एक चीज बैठ के करता रहे, फिर तो मनुष्य का अस्तित्व का महत्व क्या रहा? फिर आज घर में एक बच्चा हो, जब तक बच्चा है ना समझ है, आप उसको डायरेक्ट करते, बेटा ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लेकिन 16 साल का हो जाए, समझदार बन जाए, उसके बाद भी आप उसको टोकते रहो, ये करो वो नहीं करो, ऐसा करो वैसा करो, तो बच्चा क्या कहेगा, क्या कहेगा? इतनी बुद्धि हमारे पास है, आप बार बार हमें टोकते नहीं रहो, कहेंगे कि नहीं कहेगा? कहेगा। ठीक इसी तरह अगर भगवान ही सब कुछ करना है कि ये हाथ उठाना है तो भी भगवान की मर्जी से ही उठाना है, तो फिर हमारे एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है? फिर उसको ऊपर बैठने की जरूरत क्या है? फिर तो वो नीचे आकर के ही कर्म के खेल के मैदान में आकर खेल करे ना। तो इसीलिए भगवान ने गीता में कहा, मैंने बुद्धि दे दी, फ्रीडम दे दी, अब आप खुद रिस्पॉन्सिबल है। तो भगवान यहां पर बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, देहधारी आत्मा अपने स्वाभाविक स्वतंत्र इच्छा से कर्म करती है, इसलिए उसका उत्तरदायित्व भी उसी पर है और वही अपने किए का फल भोगती है। परमात्मा किसी के भी पुण्य कर्म या पाप कर्म के लिए जिम्मेवार नहीं है। जब मनुष्य आत्मा में ज्ञान पर अज्ञानता का पर्दा पड़ जाता है तो वह मोह माया के माया में उलझकर अपने निज स्वरूप को भूल जाता है और परमात्मा को ही अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी समझने लगता है। यही सबसे बड़ा अज्ञान है, भगवान को हर बात के लिए उत्तरदायी समझ लेना, उसके लिए ये कहना कि हाँ भगवान ही सब कुछ करे, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। परंतु जब आत्मज्ञान द्वारा वह अज्ञान नष्ट होता है तो सभी बातें इस तरह स्पष्ट समझ में आने लगती है जैसे सूर्य की रोशनी में सब स्पष्ट हो गया है। इसलिए आज के बाद हम कभी ये नहीं कहे कि भाई भगवान ही सब कुछ करता है, नहीं, हम इंसानों को भगवान ने बुद्धि दी है, स्वतंत्रता दी है और हम खुद करते। एक छोटे बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, वो छोटे बच्चे के आगे भी आप झूठ बोल करके देखो, जैसे ही आप झूठ बोलेंगे ना, वो बच्चा तुरंत आपसे कहेगा आपने झूठ बोला ना, यानी उसके पास भी विवेक है, ये सही है ये गलत है, तभी उसने आपको कहा कि आपने झूठ बोला ना। लेकिन उस वक्त हम क्या कहते हैं, समझता नहीं, चुप बैठ, तो बीच में बोलने का नहीं है ना, बड़े जब बात करते हैं बीच में बोलने का नहीं, वो कंफ्यूज्ड होता है कि भाई उन्होंने जो कहा वो सही है या मैं जो समझ रहा हूं वो सही है। अब ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है लाइफ में, तब दूसरी बार वो सोचता है भाई झूठ बोलना यही सही होगा, भाई हमारे पापा तो समझदार है, वो तो गलत है ही नहीं, इसलिए वो दूसरी बार वो भी झूठ बोलता है। अब झूठ बोलता है तो भी थप्पड़ पड़ती है, झूठ बोलता है, अब वो और कंफ्यूज हो जाता है, सच बोला तो भी कहा तू समझता नहीं चुप बैठ, अब झूठ बोलता हूं तो भी कहते हैं तुम झूठ बोलता है, अब सही क्या है? अब यहां से कंफ्यूजन लाइफ में शुरू होती है और इसीलिए कभी कभी जो कहा भगवान ने कि जिस प्रकृति के दबाव में आ जाता है व्यक्ति उसी अनुसार फिर बरतने लगता है। अगर तामसिक प्रकृति अधिक होगी उसके स्वभाव में तो झूठ को ही अपना लेता है, अगर सात्विक प्रकृति अधिक होगी तो सच को अपना लेगा। तो भगवान ने हर इंसान में बुद्धि दी है, विवेक दिया है और स्वतंत्रता दी है, इसलिए कर्म के उत्तरदायी भी हम ही हैं, हमारे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए हर कर्म करे तो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। फिर भगवान आगे कहते हैं, इंद्रियों के विषय से उत्पन्न सुख ये आदि मध्य अंत दुख का कारण है। हाँ अभी बंद हो गया, तो इंद्रियों के विषय से उत्पन्न सुख ये आदि मध्य अंत दुख का कारण है। जो मनुष्य काम क्रोध से उत्पन्न वेग को सहन कर उससे मुक्त हो जाता है वह समर्थ आत्मा है, वही सच्चा योगी है। वह अपने मन और बुद्धि को परमात्मा में स्थित कर सकता है और श्रद्धा से उसकी शरण में चला जाता है। उसकी सर्व के प्रति समदृष्टि होती है, इसलिए संसार में रहते मोह रहित संशय रहित जीवन मुक्त है। वह मन की एकाग्रता द्वारा असीम सुख का अनुभव करता है। बहुत सुंदर बात यहां याद आती है एक उदाहरण के रूप में कि एक बार एक सन्यासी राजा जनक के पास आता है और वो सन्यासी ने राजा जनक से कहा कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, उसके बाद भी मैं अपने मन को वश नहीं कर पाता, जीवन में रहते हुए आसक्तियों से मुक्त नहीं हूं, फिर मैं कैसे मान लूं कि आप इन वैभवों के बीच में रहते हैं और ये वैभवों के बीच में रहते हुए आप जीवन मुक्त स्थिति में हैं। कई बार कई लोग हमें भी ये सवाल करते हैं कि आप सब इस वैभवों के बीच में रहते हुए कैसे जीवन मुक्त रह सकते हैं, सब कुछ है यहां पर। राजा जनक मुस्कुराए और कहा बहुत सुंदर सवाल पूछा आपने, लेकिन ऐसा है कि मैं थोड़ा कारोबार में बिजी हूं तो मैं वो काम निपटा करके आता हूं, फिर आपके साथ बैठ के इसके ऊपर चर्चा करता हूं, थोड़ा वक्त मुझे दीजिए, मैं अपना काम निपटा करके फिर आ जाता हूं, लेकिन तब तक आप बैठ के क्या करेंगे, इसलिए आप ऐसा करो कि मेरे महल के अंदर जो बहुत सुंदर कारीगरी की है वो कारीगरी देख के आओ। सन्यासी ने कहा ठीक है। राजा जनक ने कहा लेकिन एक बात है कि वो कारीगरी जहां कर रहे हैं महल के दूसरे भाग में जो कारीगरी चल रही है वहां पर अभी लाइट्स लगी नहीं है, रोशनी नहीं है, आप ऐसा करो ये दिया लेकर के जाओ और दिए के प्रकाश में आप वो कारीगरी को देख के आइए। कहा ठीक है, दिया लिया उसने देखने के लिए। और फिर राजा जनक ने कहा एक और बात कि अभी खिड़की दरवाजे लगे नहीं है इसलिए हवा की वही दिशा है, कहीं ये दिया बुझ न जाए तो ध्यान रखना। कहा ठीक है मैं ध्यान रखूंगा। सन्यासी वो कारीगरी देखने चले गए, सारा महल की सुंदर कारीगरी देख करके जब वापस आए तब तक राजा जनक भी फ्री होकर के आ गए। राजा जनक ने पूछा महल देख कर आए? कहा हां देख के आया। कैसा लगा? पूछा। राजा जनक ने कहा बहुत सुंदर कारीगरी है। राजा जनक ने उस वक्त पूछा ध्यान कहां था, कारीगरी देखते समय ध्यान कहां था? तो कहा ध्यान तो दीपक पर था कि दीपक बुझ नहीं जाना चाहिए, है ना। राजा जनक ने कहा यही तो रहस्य है जीवन मुक्त स्थिति का कि मैं भी इन वैभवों के बीच में रहता हूं लेकिन मेरा ध्यान आत्मरूपी दीपक पर है जो बुझ नहीं जाना चाहिए। और यही प्रश्न का उत्तर हम आपको भी दे रहे हैं कि रहते हैं यहां भले सब सुविधाएं हैं सब साधन है लेकिन मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, ध्यान उस आत्मा पर रहता है कि यह आत्मा का दीपक बुझ नहीं जाना चाहिए, ये निरंतर जलता रहे, यही जीवन मुक्त स्थिति का रहस्य है। और फिर वही ध्यान योग की बात को भगवान स्पष्ट करते कि हे अर्जुन बाहर के विषयों दृश्यों का चिंतन नहीं करो, रहना है उसके बीच में लेकिन बाहर के विषयों का विकारों का दृश्यों का चिंतन नहीं करो। कहा ना योग में जब बैठते तो बाहर के दृश्य याद आने लगते, क्या क्या किया था दिन भर में वो दृश्य याद आते हैं, तो उन दृश्यों का चिंतन नहीं करो और अपने अंतर चक्षु को भ्रुकुटी के बीच में स्थिर करो क्योंकि यही तो स्थान है आत्मा का। मेडिकल साइंस के हिसाब से भी हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में आत्मा का निवास है, यानी सरफेस मार्किंग यही है यहां से ढाई इंच, ठीक ढाई इंच पीछे और ऊपर से दो इंच नीचे, है ना, वही स्थान है आत्मा का निवास का। तो कहा ये सरफेस मार्किंग है, इसलिए भगवान कहते हैं अपने अंतर चक्षु को ब्रुकुटी के बीच में स्थिर करो, मन को शांत कर, परमात्मा के ध्यान में बुद्धि को एकाग्र करो तथा संपूर्ण प्राणियों के प्रति कल्याण की कामना प्रवाहित कर सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाकर परम शांति को प्राप्त करो। सारे विश्व के प्रति उस वक्त इतनी शुद्ध फीलिंग्स हो और वो शुद्ध फीलिंग्स को प्रवाहित करो, है इसलिए भगवान कहते हैं अपने अंतर चक्षु को ब्रुकुटी के बीच में स्थिर करो, मन को शांत कर, परमात्मा के ध्यान में बुद्धि को एकाग्र करो तथा संपूर्ण प्राणियों के प्रति कल्याण की कामना प्रवाहित कर सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाकर परम शांति को प्राप्त करो। सारे विश्व के प्रति उस वक्त इतनी शुद्ध फीलिंग्स हो और वो शुद्ध फीलिंग्स को प्रवाहित करो, उनका चिंतन नहीं करो लेकिन सारे संसार के कामना, मना कल्याण की कामना को प्रवाहित करो, तभी योग ईश्वर के साथ हमारा लग जाएगा। अंतर चक्षु को यहां एकाग्र करो ब्रुकुटी के मध्य में, जो आत्मा का निवास स्थान है, जहां तीसरा नेत्र दिखाते हैं, वहां एकाग्र करो और उस परमात्मा के साथ जोड़ो। यही एकाग्रता की विधि है। और फिर छठे अध्याय में भगवान ध्यान योग को और स्पष्ट करता है। बहुत सुंदर रीति से स्पष्ट किया गया है कि जो हमारी शिकायत है कि मन एकाग्र नहीं होता है, तो मन को एकाग्र कैसे करना है उसकी विधि सारी बताई है। और सबसे पहले बताया कि मन को मित्र बनाओ, क्योंकि मन अगर शत्रु बन जाएगा तो वो एकाग्र होने नहीं देगा, इसलिए मन को मित्र बनाने की जरूरत है। भगवान कहते हैं मनुष्य को अपनी आत्म उन्नति करनी चाहिए, आत्मा की अधोगति न होने दे, क्योंकि जीवात्मा स्वयं का मित्र है और शत्रु होता है। जीवात्मा ही स्वयं का मित्र है और शत्रु भी होता है। तब अर्जुन का पुनः एक महत्वपूर्ण सवाल, कब मित्र होता है और कब शत्रु बनता है, जैसे हमारा सवाल कब मित्र बनता है कब शत्रु बनता है, तो भगवान कहते हैं जब मन सहित इंद्रियां जीती हुई है तो मित्र है, और जब मन सहित इंद्रियां परवश है तो वह शत्रु है। आत्मा अपने सतोगुण में है और इंद्रियों के द्वारा वही सतोगुण की एनर्जी प्रवाहित हो रही, तब वो मित्र है। लेकिन जब स्वधर्म के गुण के बजाय पर धर्म के गुण आ जाते हैं, पर धर्म कौन सा है, पर कौन सा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष छल कपट आलस भय स्वार्थ, ये सारा पर धर्म है, उसके अधीन जब इंद्रियां हो जाती है तब ये शत्रु बन जाता है, परवश हो गई तब वो शत्रु बन जाता है। फिर भगवान कहते हैं जिसने मन को जीत लिया ऐसा पुरुष मान अपमान सुख दुख सर्दी गर्मी से निर्लिप्त रहता है तथा मन को शांत रख परमात्मा की स्मृति में समा जाता है। वो ईश्वर की स्मृति में अपने मन को एकाग्र कर सकता है। तो एकाग्रता के लिए इंद्रियों को जीतना जरूरी है। अगर इंद्रियां उन्हीं आसक्तियों में लिपटी हुई है फिर तो ये शिकायत बनी रहेगी कि मन ईश्वर में नहीं लगेगा, शत्रु बन जाता है। और यहां भगवान बहुत सुंदर विधि बताते हैं ध्यान करने की, शांत अंतकरण। अंतकरण को शांत रखो, भय रहित। योग करने जब बैठो मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए, निर्संकल्प हो जाओ। ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित योगी को पवित्र एकांत स्थान में आसन लगाकर दृढ़ता पूर्वक सीधा बैठकर मन इंद्रिया तथा कर्मों को संयम में रखकर निराकार परमात्मा में मन बुद्धि और दृष्टि को एकाग्र कर हृदय में शुद्ध भावना से योग अभ्यास करना चाहिए। अब योग किसको कहा गया है ये यहां स्पष्ट किया है। पहले युद्ध की बात बताई कि इसको जीतो इसके ऊपर विजय प्राप्त करो, फिर योग लगेगा, है ना। शांत अंतकरण भय रहित ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित योगी को पवित्र एकांत स्थान में आसन लगा करके। अब आसन लगाने का महत्व क्या है यहां पर, तो भारतीय संस्कृति के अंदर जब ध्यान में बैठते हैं तो तीन आसन विशेष बताए गए, सुखासन, पद्मासन या अर्ध पद्मासन, ये तीन आसन बताए गए। अब ये तीन आसन के पीछे महत्व क्या है, उसका मतलब क्या है, क्यों ये आसन लगाना चाहिए? भावार्थ ये है कि कहा जाता है कि हमारे शरीर से एनर्जी निकलने के तीन द्वार हैं। उसमें सबसे पहला द्वार पैर है, यहां से एनर्जी बहुत निकल जाती है। इसलिए जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो पैरों को मोड़ देना, मोड़ देने से क्या होता है कि वो एनर्जी को वहां रोक लेते हैं। कैसे? कई लोग इसीलिए महात्माओं के पास जाते हैं ना, चरण स्पर्श करते हैं ऐसे ऐसे। भावार्थ क्या है उसका कि पैरों से जो एनर्जी निकल रही है वो मेरे तरफ आए, आती नहीं है, ये खाली एक भावना है, है ना? कई लोग इसीलिए महात्मा पुरुषों के चरण धो करके थाली में वो पानी को फिर चरणामृत के रूप में बांटते हैं और पीते हैं, सोचते एनर्जाइज्ड वाटर है कि जो उन्होंने तपस्या की है वो एनर्जी पानी में हमने ले लिया और वो पानी पीने से हमारी बैटरी भी चार्ज होने लगी। अब ऐसे कोई चार्ज होती नहीं है, यह अंधश्रद्धा है। गीता हमें यही सिखाती है कि क्यों नहीं हम वो एनर्जी खुद में चार्ज करें। किसी की एनर्जी पर कितना डिपेंड रहेंगे, कितना दिन चलेगी वो एनर्जी? तो ये विधि राजयोग नहीं सिखाता है। राजयोग हमें वो विधि बताता उत्तम कि जो पैरों से एनर्जी निकल जाती है तो पैरों को मोड़ लो, आसन लगा लो, और पैरों को अगर मोड़ करके बैठ जाएंगे तो वहां से एनर्जी रुक जाएगी। जैसे एक होस पाइप होता है ना, कोई बगीचे में पानी डाल रहा हो और अचानक कोई मिलने आ जाए, नलका दूर है, पानी वेस्ट भी नहीं जाना चाहिए, तो क्या करेंगे, पाइप को मोड़ देंगे। जैसे ही पाइप को मोड़ा तो पानी रुक जाएगा। ठीक इसी तरह ये पैर को मोड़ देने की सिस्टम जो है भारत में, वो इसलिए कि वहां से जो ऊर्जा निकल रही है वो रुक जाए और फिर घुटनों से वो ऊर्जा पुनः ऊपर आए। एकाग्रता के लिए वो ऊर्जा बहुत जरूरी है, इसलिए निकल नहीं जानी चाहिए लेकिन वो ऊर्जा ऊपर आनी चाहिए। इसलिए पैरों को मोड़ने का सिस्टम हर धर्म में, हिंदू धर्म में सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन के रूप में उसको मोड़ते हैं, मुसलमान धर्म में जाओ वज्रासन में बैठते हैं, मोड़ने का सिस्टम वहां भी है। क्रिश्चियन धर्म में वो नील डाउन करते हैं, मोड़ने का सिस्टम वहां भी है। तो हर धर्म में ये पैरों को मोड़ा ही इसीलिए जाता है कि वहां से ऊर्जा जो निकल रही है वो निकलनी नहीं चाहिए। आज तो आप सभी कुर्सी पर बैठे हैं, इसलिए हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप पैरों को मोड़ो यहां, लेकिन जब आप बाबा का कमरा है यहां पर, मेडिटेशन रूम है, वहां जब जाकर के बैठ के देखिए। हाँ, जिसको घुटनों का प्रॉब्लम है उसको मैं नहीं कह रही हूं, है ना, जो सहज रीति से बैठ सकते हैं उसको मैं कह रही हूं। इसलिए आप देखेंगे पहले के जमाने में घरों में सोफा सेट नहीं होता था, आसन लगाए होते थे, बिजनेस पर भी लोगों की गद्दियां होती थी, खड़े होकर के बिजनेस नहीं किया जाता था, ऊर्जा निकल जाती है। बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाते थे तो नीचे बैठ के पढ़ाना होता था, कुर्सी टेबल पर नहीं होता था। लेकिन आजकल सब जगह कुर्सी टेबल आ गया है और इसीलिए बच्चा भी पढ़ता है, एक तरफ पढ़ता जाता, दूसरे तरफ अर्थिंग हो जाता है, कुछ भी याद नहीं रहता है, मन की एकाग्रता नष्ट हो गई है बच्चों के अंदर, कारण यही है कुर्सी टेबल। इसीलिए आप अपने बच्चों की एकाग्रता को भी बढ़ाना चाहते हो तो घर में तो कम से कम उसको नीचे बैठ करके पढ़ने की आदत डालो कि नीचे बैठ के पढ़ो, ताकि जो ऊर्जा निकल जाती है वो कम से कम ऊर्जा वापस ऊपर की ओर सर्कुलेट हो और वो ऊर्जा हमें एकाग्र करने में मदद करे। भोजन करते थे पहले कहां कुर्सी टेबल होती थी, सबको नीचे। तो भारतीय संस्कृति में ओरिजिनलिटी में जो चीजें होती थी ना, उसके पीछे बहुत गहरा साइंस था, लेकिन आज उस विज्ञान को लोग भूल गए, वो सीक्रेट्स भूल गए, इसलिए जो वेस्टर्नाइज स्टाइल है उसको बहुत जल्दी एडॉप्ट कर लिया और इसीलिए व्यक्ति बहुत दिन के अंत में इतना थका हुआ आता है, घर में आता है तो एनर्जी नहीं है उसके अंदर, सारी अर्थिंग हो जाती है उसकी एनर्जी। अच्छा, दूसरा द्वार है शरीर के ऊर्जा को निकलने का, ये हाथ, यहां से भी बहुत ऊर्जा निकल जाती है, इसलिए लोग महात्मा के पास जाते हैं तो आशीर्वाद चाहते हैं कि हाथ रखे सिर पे, हाथ रखने के लिए कहते हैं, सोचते हैं कि हाथ रखेंगे तो वो ऊर्जा हमें मिल जाएंगी, ऐसे कोई ऊर्जा मिलती नहीं है, ये भी एक भावना है खाली, है ना। इसीलिए भारतीय संस्कृति में हाथ जोड़ने की प्रथा है, क्लोज द सर्किट, सर्किट को बंद कर दो। इसीलिए जब ध्यान में बैठते हैं या प्रार्थना करने बैठते हैं आसन लगा करके और हाथ जोड़ करके, आप दिलवाड़ा जाएंगे देखने के लिए, वहां 108 मूर्तियां हैं, ध्यान की स्थिति में दिखाई, हाथ को फोल्ड कर दिया, यानी वो ऊर्जा का फ्लो कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसीलिए हाथ जोड़ने की विधि है ना। और तीसरा द्वार है ये आंखें, आंखों से भी ऊर्जा बहुत निकलती है। कोई व्यक्ति के मन के अंदर छल कपट स्वार्थ कुछ भी होता है उसकी आंखें बताती है, क्योंकि आंखों से भी ऊर्जा निकलती है कांस्टेंट। किसी में क्रोध है, कोई पवित्र है शांत प्रकृति का, वो भी उसकी आंखें बताती है। पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, सारी भावनाओं सारी ऊर्जा आंखों से निकलती है। इसीलिए लोग जब मंदिर जाते हैं ना तो क्या कहते हैं, कोई पूछ ले अगर कहां जा रहे हैं तो कहते हैं दर्शन करने जा रहे हैं, दर्शन करने। लेकिन वहां जाने के बाद व्यक्ति क्या करता है, आंखें बंद कर देता है और भगवान की आंखें खुली है, तो किसने किसका दर्शन किया, हा? गए थे दर्शन करने, लेकिन दर्शन करा के आ जाते हैं, प्रभु मैं नीच पापी खलकामी कपटी हूं गंदा हूं बंदा हूं, भगवान ने ऊपर से नीचे तक देख लिया ये बंदा कैसा है, फिर तो ये कहना चाहिए ना कि दर्शन कराने जा रहे हैं, दर्शन तो किया ही नहीं हमने। और इसीलिए भगवान को भी यही कहते हैं लोग कि हे प्रभु आपकी कृपा दृष्टि अमी दृष्टि हमारे पर बनी रहे। भगवान कृपा करता है दृष्टि द्वारा, तो रिसीव करने वाला कहां से रिसीव करेगा, अगर तीनों द्वार बंद हो गए तो आएगी कहां से। आज अगर मैं सारे खिड़की दरवाजे हॉल के बंद कर दूं और फिर कहूं बाहर की रोशनी सूर्य का प्रकाश अंदर आता ही नहीं है, लेकिन उसमें गलती किसकी है, मेरी है या सूर्य की है, मेरी है, मैंने खिड़की दरवाजे बंद, ऐसे मैंने तीनों द्वार अगर बंद कर दिया और फिर मैं कहूं कि भगवान की अमी दृष्टि जैसे मेरे ऊपर तो है ही नहीं, महसूस ही नहीं होती है कि भगवान कुछ आशीर्वाद कृपा कर, लेकिन उसमें दोष किसका है, भगवान देने वाला तो दे रहा है, लेकिन हमने अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लिए तो नुकसान तो हम ही भोग रहे हैं इसलिए। तो इसलिए कहते हैं दृष्टि को खुला रखो। दृष्टि को खुला रख करके उस परमात्मा पर बुद्धि को एकाग्र करो और उस प्रवाह को आने दो। मांगने की जरूरत नहीं है कि मुझे शांति दो, सुख दो, हे प्रभु ये दो। जैसे दिन के समय सूर्य के सामने खड़े हो जाओ, सूर्य से कभी मांगेंगे हे सूर्य तेरी गर्माइश मुझे दे? मांगेंगे क्या? नहीं। आप खड़े रहो, मिलेगा। समुद्र के सामने खड़े रहकर समुद्र से मांगते नहीं है कि हे समुद्र तेरी शीतल हवा का प्रवाह मुझे मिले। मांगते हैं कभी? अरे खड़े रहो, रोम रोम के अंदर वो प्रवाह भर जाता है शीतलता का। ठीक इसी तरह मन और बुद्धि को एकाग्र करो ईश्वर में और उस प्रवाह को रिसीव करना शुरू करो। फिर देखो वो ऊर्जा आपके अंदर फ्लो होने लगती है। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि आसन लगाकर दृढ़ता पूर्वक सीधा बैठकर मन इंद्रिय तथा कर्मों को संयम में रखो। उस समय हिलना डोलना नहीं होना चाहिए। जितना हिलते डोलते हैं इसका मतलब अंदर मन इतना हिल रहा है, साइकोलॉजिकल है। तो भगवान इसीलिए कहते मन इंद्रिय तथा कर्मों को संयम में रखकर निराकार परमात्मा में मन बुद्धि और दृष्टि, दृष्टि को भी एकाग्र करो। फिर हृदय के अंदर शुद्ध भावनाओं प्रवाहित करो। शुद्ध भावना से योग अभ्यास करना चाहिए। ये योग की यथार्थ विधि है ना? ये योग की विधि है। लेकिन उसके लिए एक बहुत सुंदर बात यहां आगे कही कि यह योग उचित आहार विहार, कर्मों में उपयुक्त चेष्टा और संतुलित शयन जागरण करने वाले का ही पूर्ण होता है। उसमें भी एक कंडीशन है कि पूर्ण कब होगा, योग की यथार्थ प्राप्ति का अनुभव कब होगा? आहार विहार, कहा ना जैसा अन्न वैसा मन। अब तीन दिन से आप लोग यहां पर आए हैं, दो दिन से अन्न कैसा मिल रहा है, यहां भोजन कैसा मिल रहा है? अच्छा लग रहा है कि नहीं? घर की याद आ रही है ना? अच्छा नहीं लगा कईयों को, भाई स्पाइसी नहीं है, ऐसा लग रहा है कि अच्छा लग रहा है भोजन? क्योंकि ये भोजन जो है महाराजों के द्वारा या बाहर के लोगों के द्वारा बनाया नहीं गया है। यहां बनाने वाले भी रोज योग अभ्यास करते हैं, योगी लोग बनाते हैं बिना पैसे के, बिना कोई अपेक्षा के, शुद्ध भावना से यह आहार तैयार किया जाता है। इसलिए इसको प्रसाद कहा जाता है ना? भगवान को भोग लगा करके फिर वो भोग आप सबको बांटा जाता है, भोग भी लगाया जाता है। तो उचित आहार विहार, कर्मों में उपयुक्त चेष्टा और संतुलित शयन जागरण करने वालों का। इसीलिए आपने अपने टाइम टेबल में देखा होगा उठने का कितने बजे लिखा है, 4 बजे। 4 बजे क्यों उठने का लिखा है? उचित संतुलित शयन जागरण, ये एक बहुत बड़ा योग में पार्ट प्ले करता है। क्या होता है कि हमारा ये शरीर बना किससे है? 5 तत्वों से बना है, प्रकृति से बना है। और वही प्रकृति एक नियम में चल रही है। कौन सा नियम में चल रही है? तो प्रकृति सूर्यास्त होने के बाद, इसीलिए सूर्यास्त हो जाने के बाद लोग अपने बच्चे को भी कोई फूल तोड़ने जाता है तो क्या कहते हैं? बेटे फूल नहीं तोड़ना चाहिए रात में, पेड़ पौधे सो गए, कहते हैं ना ऐसे। सुबह तोड़ना, फूल तोड़ना है तो भी रात को नहीं तोड़ने देते हैं कि पेड़ पौधे सो गए। सो गए का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन रिलीज करना उसने बंद कर दिया, ऑक्सीजन लेना शुरू किया और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना शुरू करते हैं। ठीक इसी तरह जब ब्रह्म मुहूर्त होता है, सुबह होती है, अमृत वेला उसको कहा जाता, अमृत का समय, तो उस समय उसकी साइकिल चेंज होती है। पेड़ पौधे जागते हैं, यानी वो ऑक्सीजन रिलीज करना शुरू करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेना शुरू करते हैं। भावार्थ ये है कि सुबह सुबह जो फर्स्ट ऑक्सीजन निकलता है वो क्वालिटी जो है वो अमृत क्वालिटी है, अमृत जैसी है। उस समय अगर बैठ करके हम ध्यान करें और उस समय वो प्राणवायु जब मिलता है शरीर को तो बुद्धि की तेजस्विता बढ़ती है। इसीलिए शुरू के लोग यही कहते थे, पहले के जमाने के लोग यही कहते थे, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी वाइज। विजडम जो मिलती है माना जो बुद्धि का विकास होता है वो सुबह के फ्रेश ऑक्सीजन में अमृत जैसा है, इसलिए उसको अमृत वेला कहा। और इसीलिए ऋषि मुनि उस समय में उठ करके जब वो प्राणवायु लेते थे और योग अभ्यास करते थे तो उसी से कंचन काया निरोगी काया होती थी। आज हर एक को बीमारी क्यों है? बीमारी क्यों है? क्योंकि हमने अपनी प्रकृति को डिस्टर्ब कर दिया है, एक्सप्लॉइट कर दिया है। क्योंकि हमारी प्रकृति भी तो उसी पांच तत्वों से बनी है। वो सो जाते हैं अपने टाइम पर सूर्यास्त होने पर, लेकिन हम रात को 12 एक बजे तक इसको खींचते रहते हैं। ये सोना चाहता है, ये प्रकृति भी सोना चाहती, इसलिए आप देखेंगे 8-9 बजने पर उबासी आना शुरू हो जाएगी, संकेत मैसेज देना चालू करता है कि अब मैं सोना चाहता हूं, इट्स हाई टाइम नाउ। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, कई लोग रात के समय में चाय पीते हैं, उसको जगाना है, अरे सोने कैसे देंगे हम इसको, माना अपने ही शरीर पर जुल्म कर रहे हैं, इसलिए ये शरीर बीमार पड़ता है, इसलिए ये कंचन काया नहीं होती है। और सुबह में जो फ्रेश क्वालिटी ऑक्सीजन मिलना चाहिए, ब्रेन को भी जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, क्योंकि उठते ही 8-9 बजे तक है। कितना एक्सप्लॉइटेशन होता है, हम अपने शरीर को कितना एक्सप्लॉइट करते हैं। इसीलिए आजकल के लोगों के अंदर डिप्रेशन, डिप्रेशन कारण क्या है, टेंशन का कारण क्या है, कि माइंड हेल्दी स्टेट में नहीं है, इसीलिए डिप्रेशन और टेंशन आ जाता है व्यक्ति को। बात बात के अंदर टेंशन हो गया, बात बात में डिप्रेशन हो गया, नर्वसनेस आ गई, क्योंकि उसको जो टॉनिक मिलना चाहिए सुबह का वो टॉनिक नहीं मिलता है। कई बार माँ बाप बच्चों को कह देते हैं, कोई बच्चा रात को पढ़ता है तो क्या कहते हैं, भाई बेटा रात को सो जाओ, तुम जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठ के पढ़ना, फिर सब याद रह जाएगा, कहते हैं ना आप अपने बच्चों को। भावार्थ यह है कि सुबह के समय में अगर बच्चे पढ़ते हैं उठ करके उस वायु में, तो वो फ्रेश ऑक्सीजन, उस क्वालिटी को ऑक्सीजन जो होती है वो सारे दिन में वो क्वालिटी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा आपको। सारा दिन पोल्यूशन इतना हो जाता है, जो फ्रेश क्वालिटी का ऑक्सीजन ही कहां है। तो उस समय इसीलिए यहां पर आपको 3 दिन ये टेस्ट दिया जा रहा है कि आप सुबह उठ करके देखो किस तरह आपका मन बुद्धि प्रफुल्लित हो जाता है, और सारा दिन उसके आधार पर उसको जो टॉनिक मिल गया उससे सारा दिन उसका प्रभाव देखो कि कैसा रहता है। सारा प्रभाव खुश रहता है इंसान, खुशी का अनुभव करता है। आप कभी उठ के देखो, ये साइंस है उसके पीछे, है ना। और एक सीक्रेट आपको बताती हूं इसके पीछे कि सुबह के समय में ही भगवान भाग्य विधाता के रूप में भाग्य बांटता है। इसीलिए लोग जब भाग्य की बात करते हैं ना तो क्या कहते हैं, भगवान जब भाग्य बांटने निकला था तब तुम सोया हुआ था क्या? और तभी कहा जाता है जिन सोया तिन खोया, जिन जागा तिन पाया। क्योंकि सारी रात इंसान को नींद नहीं आएंगे, फटकते रहेंगे, लेकिन सुबह 3 बजे के बाद जो नींद लगती है ना, और 3 बजे से ही भगवान का भाग्य बांटने का टाइम शुरू होता है, 3 से 5, और वही टाइम है जो नींद भी बहुत अच्छी आती है। क्योंकि माया नहीं चाहती है कि ये भगवान से भाग्य प्राप्त करे, इसलिए सारी रात नींद नहीं आएंगी, लेकिन 3 बजे के बाद माया कहती है अच्छा बेटा अब सो जाओ, तुम अब जागने की जरूरत नहीं है तुम्हें, अब सो जा, है ना, और वो सुला दे। और 3 से 5 में जो नींद होती है ना, इतना फ्रेश कर देती है व्यक्ति को, 2 घंटे की नींद भी एकदम फ्रेश कर देती है, इतनी ताकत वाली होती है। लेकिन उसी समय भगवान भाग्य बांटने का काम करता है, और उस समय जो उठ करके अपने मन को एकाग्र करता है ईश्वर में, तो कहा जाता कि ईश्वर भाग्य लिखने की जो कलम होती है ना, वो आपके हाथ में पकड़ा देता है कि खींच लो, जितनी लंबी रेखा खींचना चाहो खींच लो, देख देखो आप कितनी लंबी रेखा खींच सकते हैं। और हमने ये प्रत्यक्ष में अपने जीवन में और लोगों कई जो योग अभ्यास करने वालों के जीवन को पलटते हुए देखा है, अमृत वेले में कैसे भाग्य विधाता से वरदान प्राप्त करते हुए देखा है, हमने अपने जीवन में भी इस चीज को अनुभव किया है कि किस तरह भाग्य को पलटाया जा सकता है। वो अमृत वेला ही ऐसा है। बुद्धि का विकास कितना होता है ये खुद अनुभव करके देखा है। भावार्थ ये है कि वो समय जो उसका महत्व जान लेता है, और उसको ये अंधश्रद्धा की बात नहीं है, आप प्रयोग करके देख सकते हैं, ये चैलेंज है हमारी, चैलेंज है, लेकिन उस समय झुटका नहीं मारना, क्योंकि जैसे किसी को हाथ में कलम पकड़ा दिया जाए और उसको नींद आ जाए, झुटका मारने लगे तो वो लाइन ऊपर खींचने के बजाय क्या हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे। तो भाग्य की कलम आपके हाथ में है, भगवान ने स्वतंत्रता दे दी आपको, जितनी लंबी भाग्य की रेखा खींचना चाहो खींचो, और उस समय आपको नींद आती है, माया तो नहीं चाहती है, तो माया क्या करती है, वो हाथ को बार बार आप ऊपर खींच रहे हैं फिर नीचे हो जाती है, फिर खींचना शुरू कर दे फिर नीचे हो जाती, ऊपर उठने ही नहीं देती है। उस समय बैठो, स्वस्थ होकर के बैठो, इसीलिए भगवान ने कहा आसन लगाकर दृढ़ता पूर्वक सीधा बैठो, और मन बुद्धि और दृष्टि तीनों को उस परमात्मा में एकाग्र करो और उस प्रवाह को आने दो। आप लोग उठे हैं 3 दिन में ये अमृत वेला, नहीं उठे हो तो कल जरूर उठना, कल जरूर उठ के देखिए, और उसका प्रभाव सारे दिन पर देखना कैसी एनर्जी आती है। कई लोग सोचते हैं सुबह जल्दी उठेंगे फिर सारा दिन हमारा ये होगा, हाँ थकावट लगेगी, नहीं थकावट नहीं लगेगी, इतनी एक नई ऊर्जा आपके अंदर भर जाएगी, और उससे आपके अंदर इतना अंदर में शक्ति आ जाएगी कि सारा दिन भी आपको थकावट का अनुभव नहीं होगा। अनुभव करके देखिए, आप ट्रायल करके देखिए। तो उचित आहार विहार और संतुलित शयन जागरण, कि रात को जैसे ही पेड़ पौधे सो जाते, हम भी अगर थोड़ी जल्दी सोने की आदत डालें तो ये शरीर बहुत खुश होता है हमसे, शरीर के भी हम मित्र बन जाते हैं, शरीर के शत्रु नहीं बनो, आप शरीर को टॉर्चरिंग नहीं करो, शरीर के ऊपर जुल्म नहीं करो, उसको सोना है सो जाने दीजिए। तो संतुलित शयन और जागरण, और फिर सुबह उठो, और सुबह उठ करके देखो, आपको इतनी अंदर में एनर्जी मिल जाएंगे। तो ये है योग करने की सही विधि। और फिर भगवान कहते इस योग अभ्यास द्वारा योगी भौतिक एवं मानसिक क्रियाओं से उपराम हो जाता है, एवं विशुद्ध मन से आत्मस्वरूप में स्थित हो करके, आत्मस्वरूप में स्थित करो उस समय मन को, कि आत्मा सतोगुणी स्वरूप है, आत्मस्वरूप में स्थित होकर परमात्मा की याद में अति इंद्रिय सुख और आत्म संतुष्टि का अनुभव करता है इस योग अभ्यास द्वारा। ये अनुभूति है उसकी, मन को एकाग्र करना सहज हो जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति जिस स्वरूप में स्थित होगा, अपने आप को जो समझता होगा, उसी की याद उसको सहज स्वाभाविक आएगी। जब आप अपने आप को पिता समझते हो तब कौन याद आता है? आपके बच्चे याद आएंगे। जब आप अपने को पति समझते तब कौन याद आएगा? पत्नी की याद आएंगी। जब आप खुद को बच्चा समझेंगे तो कौन याद आएगा? आपके अपने माता पिता याद आएंगे। आप वकील के पेशे में जब आप अपने को वकील समझते हैं तो कौन याद आएगा? आपको अपने क्लाइंट याद आएंगे। उस समय परिवार के सदस्य याद नहीं आते। जब अपने आप को वकील समझा है तो आपको अपना क्लाइंट ही याद आना है। ठीक इसी तरह जब अपने आप को आत्मा समझेंगे तो कौन याद आएगा? परमात्मा। लेकिन जब परमात्मा को याद करने बैठो और उस समय अपने आप को वकील समझा तो कौन याद आएगा? हाँ, तो भगवान के सामने बैठने का कोई मतलब नहीं। तो भगवान के सामने जब बैठो उस समय अपनी कॉन्शियसनेस को आत्म स्वरूप में स्थित करो। यही भगवान कहते हैं कि विशुद्ध मन से आत्म स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा की याद में अति इंद्रिय सुख और आत्म संतुष्टि का अनुभव करता है। एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है और अति इंद्रिय सुख क्या होता है उसका अनुभव करके देखिए। इस सत्य स्वरूप में स्थित सर्व प्राप्ति स्वरूप किसी भी प्रकार के दुख से विचलित नहीं हो सकते हैं। इस योग का दृढ़ निश्चय एवं धैर्यता से अभ्यास करने से साधक सफल हो जाता है, उसकी साधना सफल हो जाती है। यही साधना है। और ये अभ्यास करके आप देखिए, फिर अर्जुन का एक महत्वपूर्ण सवाल कि हे भगवान, ये मन बड़ा चंचल है, हठी है, बलवान है, इसलिए इसे वश में करना मैं वायु की भांति अति दुष्कर मानता। तो भगवान कहते अर्जुन, निरसंदेह मन चंचल है, भगवान भी जानते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? निसंदेह मन चंचल है, परंतु अभ्यास करना पड़ता। कोई भी चीज के लिए यही कहते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस के बिना परफेक्शन नहीं आएगा। योग के लिए भी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी, मन भटक जाएगा, इधर उधर भागेगा, लेकिन फिर भी जैसे जैसे अभ्यास करते जाओ तो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये वश में हो जाता है। मन को वश न करने वाले पुरुष के लिए योग कठिन है, किंतु स्ववश मन वाले पुरुषार्थी के लिए योग सहज हो जाता है। स्ववश करना है, जैसे वो कहानी सुनाई, पहले उसकी दिशा बदली करो और दिशा बदली करके सूर्य के तरफ मुख हो और परछाई पीछे हो, कामनाएं पीछे हो। परमात्मा की स्मृति में रह करके कर्म करते चलो तो कोई त्रुटि उसमें नहीं होंगी। योग भी कठिन नहीं लगेगा, शुरू में थोड़ा दिक्कत लगेगी प्रैक्टिस जब तक हो जाए, लेकिन धीरे 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 फिर अभ्यास से मन वश में हो जाता है। बहुत सुंदर एक बात याद आती है अभ्यास से कि अर्जुन इतना बड़ा धनुर्धर कैसे बना। तो कहा जाता है कि बचपन में पांचों पांडव सोए हुए थे, तो अर्जुन और भीम बाजू बाजू में सोए हुए थे। आधी रात को अचानक अर्जुन की नींद खुली और नींद खुली तो उसने देखा उसके बाजू में भीम है ही नहीं। तो उसको लगा ये आधी रात में भीम कहां चला गया। तो वो भी उठ करके देखने के लिए गया तो देखा कि भीम रसोई घर में बैठ के खाना खा रहा था। तो अर्जुन ने पूछा, भीम तू खाना खा रहा है? कहा, बड़ी भूख लगी थी, नींद नहीं आ रही थी तो खाना खा रहा। तो अर्जुन ने कहा, भले खाओ लेकिन कम से कम बत्ती तो जला देते, अंधेरे में कैसे खा रहे हो? अंधेरे में कैसे खा रहे हो, बत्ती जला देते थे। तो भीम मुस्कुराकर कहता है कि अर्जुन अभ्यास, मुझे खाने का इतना अभ्यास है, जो वो सीधा मुंह में जाएगा इधर उधर कहीं नहीं जाएगा, है ना, अभ्यास। तो वहीं से अर्जुन ने भी प्रेरणा ली कि अगर भीम अंधेरे में भी खा सकता है और मुंह में ही जाता है, मैं भी अगर अभ्यास करूं तो अंधेरे में तीर चलाऊं और निशाने को लगे, और वहां से वो इतना बड़ा धन होता है। तो योग का भी अभ्यास करेंगे तो अभ्यास से सब सरल हो जाता है, सहज हो जाता है, मुश्किल कुछ भी नहीं होता है। और फिर भगवान को और एक प्रश्न पूछता है अर्जुन कि हे भगवान, असफल पुरुषार्थी जिसकी योग में श्रद्धा है, ये नहीं कि श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा है, पर अंत समय अगर मानो उसका मन विचलित हो जाए तो वह योग सिद्धि के बजाय किस गति को प्राप्त होता है? क्या वह छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता है? बहुत सुंदर यह सवाल है जो आप सबके मन में भी हो सकता है कि मानो पुरुषार्थी पुरुषार्थ कर रहा है, अभ्यास भी कर रहा है, योग में उसकी श्रद्धा भी है, लेकिन असफल हो गया क्योंकि अंतिम समय उसका मन विचलित हो गया, तो वो किस गति को प्राप्त होता है? तो भगवान ने बहुत सुंदर उसका जवाब दिया है, पुरुषार्थी कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है, वो पुनर्जन्म पाकर अपने पूर्व जन्म के संस्कारों को जागृत करता है और योग अभ्यास के मार्ग पर आकर्षित होता है, पुनः उस मार्ग पर आगे बढ़ता है। और जो योगी नियम पूर्वक समस्त पापों से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से प्रगति करता है वह श्रेष्ठ गति को ही प्राप्त हो जाता है। योगी पुरुष तपस्वियों से, ज्ञानियों से तथा सकाम कर्मियों से श्रेष्ठ है, इसलिए हे अर्जुन तुम योगी बनो और समर्पण भाव के साथ अंतर मन से योग का आचरण करो। योगी बनने की प्रेरणा दी इसलिए भगवान ने, तपस्वी बनने के लिए नहीं कहा, घर बार को छोड़ने के लिए नहीं कहा, और हम भी यही आपको कहते, आप घर गृहस्थ में रहते हुए अपने कर्तव्य को संभालते हुए जिम्मेवारियों को निभाते हुए आप योगी बनो और योगी बन करके देखो कि आपके जीवन के अंदर कर्मों में भी कितनी कुशलता आती है और आप धीरे धीरे जीवन के अंदर कितनी आत्म उन्नति कर सकते हैं, कभी दुर्गति नहीं होती है उस आत्मा की। और इस तरह भगवान ने छठे अध्याय तक ये बातें स्पष्ट किया। सातवें अध्याय में भगवान ने और एक रहस्यपूर्ण बातें खोली है, और वो रहस्यपूर्ण बात क्या है, ज्ञान विज्ञान योग बताया है। क्योंकि अर्जुन को बार बार ये सवाल मन के अंदर आ रहा था कि हे प्रभु, जब भगवान ने कहा मैं अजन्मा हूं, अव्यक्त हूं, मुझे नहीं देख सकते, मेरे कर्मों को नहीं देख सकता, ये चरम चक्षु से नहीं देख सकते हैं, तो अब अर्जुन पुनः उस विषय पर आता है कि कौन देख सकता है, कौन जान सकता है, क्योंकि अब वो समझना चाहता है। अब तक योग की बातों को समझा, लेकिन अब जब भगवान ने बार बार कहा योगी बनो, तुम अपने मन बुद्धि को मुझ में एकाग्र करो, और भगवान ने कहा कि मेरा स्वरूप का को नहीं देख सकते हैं इन चरम चक्षुओं से, तो अब वो इस विषय को जानना चाहता है। तो भगवान कहते कि हे अर्जुन, मुझे जानने के लिए हजारों में कोई विरला ही प्रयत्न करता है, कोटों में कोई, कोई में भी कोई विरला ही प्रयत्न करता है, और उसमें भी कोई विरला ही जानता है। अब ये शब्द श्री कृष्ण नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण को कौन नहीं जानता है, दुर्योधन जैसे भी जानते थे, कितना शक्तिशाली समर्थ थे। और भगवान अगर कलयुग के अंत में जो कहा गीता का ज्ञान देने आते हैं और अधर्म का नाश और सत धर्म की स्थापना करनी है, और मन मोहक श्री कृष्ण के रूप में अगर आए तो कौन व्यक्ति उसको कार्य करने देंगे? भीड़ मचा देंगे, क्यों लगा देंगे दर्शन की, दर्शन की क्यों लगा देंगे ना? कोई उसको कार्य करने देंगे कि नहीं देंगे? कार्य ही नहीं करने देंगे, है ना। इसलिए भगवान कहते, माना भगवान अति साधारण रूप में आता है। इसलिए कहा, मुझे जानने के लिए हजारों में कोई विरला प्रयत्न करता है और उसमें भी कोई विरला जानता है। जो अनन्य भाव से मेरे आश्रित होकर मेरे साथ योग लगाता है, वह सरलता से मेरे संपूर्ण रूप को जान लेता है कि भगवान कौन है, कैसा है, और माया को पार कर जाता है, माया से भी पार हो जाता है। इसका मतलब भगवान इतना साधारण स्वरूप में आता है, यानी श्री कृष्ण का जो नर स्वरूप है, उस नर स्वरूप में आते हैं, जिस कारण सभी नहीं पहचानते हैं। क्योंकि अगर सभी पहचान ले उस स्वरूप में आए, तो कोई कार्य ही नहीं करने दे, भीड़ मचा देंगे। मुझे याद आता है कि कुछ सालों पहले वो गणेश जी ने दूध पिया था, है ना, आप सबको भी मालूम होगा, है ना। और उस समय क्यों ऐसी लगी थी, रात रात लोग क्यों में खड़े थे देखने के लिए, और आधा घंटे के अंदर सारे विश्व के अंदर लोगों को पता चल गया था, दूसरे धर्म वालों को भी पता चल गया था कि गणेश जी ने दूध पिया, है ना। और आज तो इंटरनेट जब इतना पावरफुल हो और भगवान आ जाए और उसको कोई कार्य करने दे, ऐसा हो सकेगा? कितनी भीड़ मचा देंगे, धक्का मुक्की हो जाएंगी, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, कितना सिक्योरिटी रखना पड़े उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, क्यों कितनी लंबी होंगी, कभी खत्म ही नहीं होंगी। तो भगवान कार्य कब करेंगे? अधर्म का नाश और सद्धर्म का कार्य कोई जादू की छड़ी घुमा के तो नहीं करेगा ना, प्रैक्टिकल कर्म किया है उसने। इसीलिए उसका महत्व है, भावार्थ ये कि अति साधारण स्वरूप में आते हैं, जिस कारण कोटों में कोई में भी कोई विरला ही उसको पहचानता है, और अनन्य भाव से जब उसके आश्रित हो जाते हैं, तब सरलता से उसके संपूर्ण स्वरूप को जान लेता है। फिर भगवान कहते, प्रकृति पुरुष और परम पुरुष से ये संसार चक्र चल रहा है, इसमें सर्वश्रेष्ठ मैं परम पुरुष हूं, परमात्मा। पुरुष माना आत्मा, तो परम पुरुष यानी परमात्मा हूं। मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं, जो धर्म के विरुद्ध नहीं है उन बुद्धिमानों की बुद्धि हूं। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं, यानी सात्विक राजसिक तामसिक ये गुणों के अधीन मैं नहीं होता। श्री कृष्ण तो फिर भी सात्विक प्रकृति के थे, है ना। परमात्मा ये गुणों के अधीन नहीं है, उनसे भी ऊपर है। फिर भगवान कहते हैं, माया द्वारा जिनके ज्ञान का अपहरण हुआ है और जो आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए हैं, वे मनुष्य में अधम दुष्ट कर्म करने वाले मूढ़मती परमात्मा की शरण ग्रहण नहीं कर सकता है। तो वो कहां जाते हैं? अगर भगवान की शरण में नहीं आते तो वो कहां जाते हैं? तो भगवान उस समय कहते हैं कि जिनकी बुद्धि इच्छाओं के द्वारा मारी गई है, वे अपनी इच्छा पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। अब यहां स्पष्ट होता है परमात्मा और देवता, वो देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विधि विधान का पालन करते हैं और अपनी इच्छा की पूर्ति करते हैं। किंतु अब यहां एक रहस्यपूर्ण बात ये बताते हैं, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारी प्राप्ति मेरे द्वारा ही प्रदत्त है। प्राप्ति कराने वाले वो देवताएं नहीं है, प्राप्ति कराने वाला तो परमात्मा ही है, तो मेरे द्वारा ही प्रदत्त है। लेकिन अल्पज्ञ बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं तो प्राप्त होने वाला फल भी सीमित और क्षणिक होता है, टेम्पररी प्राप्त हो जाता है, उसमें व्यक्ति खुश हो जाता है। लेकिन जो परमात्मा की शरण में जाते हैं वो संपूर्ण प्राप्ति करता है। लेकिन जिनकी बुद्धि माया के द्वारा, जिनका अपहरण हो गया बुद्धि का अपहरण, वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में। कितना स्पष्ट है गीता के अंदर हर बात कि कौन देवताओं की पूजा करता है, कौन परमात्मा की शरण में जाता है और किस लिए जाता है। तब अर्जुन पुनः ये सवाल पूछता है, परमात्मा को मनुष्य क्यों नहीं जान पाते। तो भगवान कहते हैं, संसार के संपूर्ण प्राणी इच्छा और द्वेष अर्थात राग द्वेषादि द्वंद्व से उत्पन्न मोह से ग्रस्त है, इसलिए वो मुझे नहीं जान पाते। बुद्धिहीन मनुष्य मुझ अव्यक्त पुरुष को, व्यक्त भाव को प्राप्त किया हुआ मानते हैं। वे मुझ अजन्मा अविनाशी सर्वोच्च को नहीं जानते, क्योंकि मैं सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता। भगवान ने कह दिया, मैं सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता हूं, मैं इनके यानी श्री कृष्ण के भी, मैं इनके तीनों कालों को, भूत वर्तमान भविष्य को जानता, मैं इनके भी तीनों कालों को जानता। यानी श्री कृष्ण का जो साधारण स्वरूप नर स्वरूप है, इसीलिए कहा जाता नर से सो नारायण, नारी से सो श्री लक्ष्मी, अर्थात जो उसका नर स्वरूप है उस साधारण स्वरूप में परमात्मा अवतरित होते हैं, जन्म नहीं लेते, अवतरित होते हैं अपना कार्य करने के लिए, ताकि साधारण स्वरूप होने कारण मनुष्य पहचान नहीं सकते हैं। तब फिर दोबारा अर्जुन पूछता है, परमात्मा को कौन जान पाते हैं। भगवान कहते हैं, जो पुण्य कर्म करने वाले हैं, जिनके पाप नष्ट हो गए और राग द्वेषादि द्वंद के मोह से मुक्त होकर अपने व्रत में दृढ़ रह करके मुझ में अपने मन को एकाग्र करते हैं, वे अंत में संपूर्ण आध्यात्म, दिव्य कर्म, भौतिक जगत, देवताओं और यज्ञ के विधि का नियंत्रक मुझे जान जाते हैं। मैं कौन हूँ, मेरा संपूर्ण रूप क्या है, मेरा कार्य क्या है, सब कुछ जान जाते हैं, संपूर्ण जान लेते हैं। और इस तरह से सातवें अध्याय में भगवान ने अपनी वास्तविकता पुनः स्पष्ट किया कि मैं अपना कार्य संसार में किस तरह से करने आता हूं। आठवें अध्याय में फिर भगवान अक्षर ब्रह्म योग बताते हैं, अर्जुन के कुछ महत्वपूर्ण सवालों का जवाब होता है। सात सवाल पूछते हैं भगवान को कि हे पुरुषोत्तम, अर्थात परमात्मा को, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, श्रेष्ठ कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है, यज्ञ का अधिष्ठाता कौन है और वो मनुष्य शरीर में कैसे है, और सातवां प्रश्न, मृत्यु के समय आत्मसंयमी आपको कैसे जान सकते हैं। पहला सवाल, ब्रह्म क्या है, तो भगवान कहते जो अक्षय है, अविनाशी है और दिव्य तत्व है जिसका विधान कभी नहीं बदलता, वह ब्रह्म महतत्व है, जहां आत्माएं निवास करती, जहां परमात्मा भी निवास करते, उसका विधि का विधान कभी नहीं बदलता। ये मनुष्य सृष्टि की तरह परिवर्तनशील नहीं है, वो ब्रह्म महतत्व है। फिर अध्यात्म क्या है, तो भगवान कहते जो आत्मा और परमात्मा के ज्ञान के अध्ययन द्वारा माया के अधिपत्य से निकलकर आत्मा के अधिपत्य में स्थित होकर उन्नति को प्राप्त करता है, वह है अध्यात्म। अध्यात्म माना, सिंपल शब्द में कहूं, अध्ययन द्वारा आत्म उन्नति करना। अध्ययन कौन सा, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान का अध्ययन करना, उससे माया के अधिपत्य में जो है हम उसमें से निकल जाते, उसके क्लचेज में से निकल जाते हैं और अपने आत्मा के अधिपत्य में यानी आत्मा मालिक बन जाते हैं और धीरे धीरे आत्म उन्नति प्राप्त कराता, वो अध्यात्म है। तीसरा, श्रेष्ठ कर्म क्या है, तो कहा पंच महाभूतों से उत्पन्न देह के अभिमान या विकारों से परे रहकर जो सकारात्मक कर्म करता है वह सुकर्म या श्रेष्ठ कर्म है। फिर चौथा, कहा भौतिक जगत क्या है, तो कहा पंच महातत्व से बना यह संसार जिसमें प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है ये भौतिक जगत है। इतने सटीक जवाब दिए हैं, एक एक लाइन में भगवान ने, एक एक श्लोक में उसके जवाब दिए हैं। फिर भगवान कहते हैं, भगवान से पूछते यज्ञ का अधिष्ठाता कौन है, तो कहा देहधारियों में श्रेष्ठ देवता का शुभ कर्म रूप यज्ञ का अधिष्ठाता मैं ही हूं। यानी देवता से परमात्मा अलग है, ये स्पष्ट हो गया। और फिर मृत्यु के समय आत्म संयमी परमात्मा को कैसे जान सकते हैं, तो भगवान ने कहा जिसने जीवन भर जो अभ्यास किया हो उसे अंत काल में वही स्मृति रहती है, इसलिए कहते अंत मते सुगते। और जो अंत काल में मेरी स्मृति में रहकर देह त्याग करता है वह मेरे सानिध्य में आ जाता है, इसलिए हे अर्जुन तुम हर समय मेरी स्मृति में रहकर युद्ध करो, यानी संघर्ष करो। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये दुर्जय शत्रु है, ये शत्रु परमात्मा स्मृति में रहने नहीं देंगे, उसी समय मायावी प्रवृत्ति बाधा के रूप में प्रत्यक्ष उद्भव होने लगती है जीवन के अंदर। और फिर आठवें अध्याय में भगवान अपने संपूर्ण व्यक्तित्व का परिचय देता है कि हे अर्जुन मैं सर्वज्ञ हूं, अनादि हूं, सभी का नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म। ये भगवान के महावाक्य अपने स्वरूप के बारे में बताता है, सभी का नियंता हूं, अनादि हूं, सर्वज्ञ हूं, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सभी का आधार मूरत, नित्य दिव्य प्रकाश स्वरूप अशरीरी हूं। स्पष्ट हो गया। और फिर भगवान अपने परमधाम का भी वर्णन करते हैं कि इसके अतिरिक्त एक अव्यक्त शाश्वत प्रकृति है जो सभी पंच महाभूतों के नाश होने पर भी नाश नहीं होती है और व्यक्त अव्यक्त अवस्था से श्रेष्ठ है, अविनाशी है, सबसे परे है, वही मेरा परम धाम है जहां मैं विराजमान हूं। भगवान ने गीता में कभी नहीं कहा मैं सर्वव्यापी हूं, मैं परम धाम का निवासी हूं जो व्यक्त अव्यक्त से परे पंच महाभूतों के नाश होने पर भी नाश नहीं होता है, जो श्रेष्ठ है, अविनाशी और सबसे परे है, वही मेरा परम धाम है जहां मैं विराजमान हूं। तो खुद का भी परिचय दिया, कहां रहता है वो परिचय भी दिया। और फिर बताते इस अध्याय के अंत में कि संसार से जाने के दो मार्ग है ना, प्रयाण करने के दो मार्ग, एक प्रकाश का मार्ग, दूसरा अंधकार का मार्ग। प्रकाश का मार्ग कौन सा है, जो मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है वह ज्ञान युक्त, उसके क्वालिटीज क्या होंगी जो प्रकाश के मार्ग से जाएगा, तो वह ज्ञान युक्त। कर्म मार्ग अर्थात जिसमें यज्ञ सेवा की अग्नि जलती हो, जीवन को शुद्ध करने की अग्नि जलती हो, बुद्धि की प्रभा सूर्य के समान चमकती हो, हृदय आकाश में आसक्ति के बादल न हो और भावनाओं का पूर्ण उजाला हो, वो प्रकाश के मार्ग से जाता है। ऐसे दिन के शुभ क्षण में शुक्ल पक्ष में या सूर्य उत्तरायण में वो रहता हो तब प्राण तन से निकले तो वह आत्मा श्रेष्ठ गति को प्राप्त होती है, उसके विपरीत जो है वो अंधकार के मार्ग से। अब हमें डिसाइड करना है कि हमें किस मार्ग से जाना है, प्रकाश के मार्ग से जाना है या अंधकार के मार्ग से जाना है। जाना तो सबको है ना, जैसे दुनिया के अंदर दिखाते हैं कि एक मां बाप के दो बच्चे हो, एक बच्चा तूफानी है, दूसरा बच्चा आज्ञाकारी है। मां बाप दोनों बच्चों को कहते बच्चे तैयार हो जाओ स्कूल जाना है, जो आज्ञाकारी है वो तो तुरंत उठता है, नहा धोकर तैयार होकर रेडी हो जाता है, लेकिन जो तूफानी है उसको मालूम है मैंने होमवर्क किया नहीं है, स्कूल में जाऊंगा तो भी मुझे पनिशमेंट मिलनी है, तो क्या कहता है आज मुझे स्कूल नहीं जाना है ना। मां बाप क्या कहेंगे, ठीक है नहीं जाओ, ऐसे कहेंगे क्या? नहीं, क्योंकि एक बार नहीं तो ये आदत पड़ गई तो हमेशा ऐसा ही करेगा। इसलिए माँ बाप क्या करते, पहले उसको प्यार से समझाते हैं, बेटा देखो स्कूल तो जाना पड़ेगा कुछ भी हो जाए, या नहीं माना तो लालच भी देंगे, अच्छा तेरे को चॉकलेट देंगे, आइसक्रीम देंगे, जो उसको मनपसंद चीज होंगे वो ला करके देने का वायदा करते हैं। फिर भी अगर नहीं माना तो दो थप्पड़ मार कर घिसट कर उसको बाथरूम में ले जा करके नहलाएंगे धुलाएंगे रेडी करेंगे और स्कूल भेजेंगे। अब दोनों बच्चे स्कूल जा रहे हैं, एक हंसता हुआ जा रहा है, मुस्कुराता हुआ जा रहा, और दूसरा रोता हुआ जा रहा है। अब स्कूल जाने के बाद भी जो हंसता हुआ है वो तो सारा दिन उसकी भी प्राप्ति कर लेता है, स्कूल की भी प्राप्ति करता है, लेकिन जो रोता हुआ गया तो उसका पिता जाकर उसकी टीचर को कह देता है आज उसको मार पड़ी है, घर में थोड़ा आप ध्यान दे देना, है ना। तो वो टीचर भी क्लास में आने के बाद वो क्या करती है, सब बच्चों को, उसको कोई छेड़ेगा नहीं, बैठे रहने दो उसको एक कोने में, है ना। और वो बच्चा रोता है, रो रो करके थक करके सो जाता है, बेंच पर ही सिर रख के सो जाएगा। स्कूल छूटती है उसके बाद भी उसको मूड ही नहीं है, कुछ खेलता नहीं है, कुछ हंसता नहीं है, उसके फ्रेंड्स उसको मनाने का प्रयत्न करते हैं, दिन के अंत में जैसे शाम होती है तब जाकर के उसको कहीं मूड आता है, फिर खेलने के लिए जाता है, सब भूल जाता है। ठीक परमात्मा के भी दो प्रकार के बच्चे हैं, एक है जो आज्ञाकारी है और दूसरे हैं जो थोड़े तूफानी है, है ना। भगवान दोनों को कहता है देखो अब जाने का टाइम आ गया है ना, इस संसार से अभी अधर्म का नाश, सब धर्म की स्थापना करनी है, कलयुग बदलकर सतयुग आना है, तो इसलिए अब जाना तो पड़ेगा, तभी सतयुग आएगा, नहीं तो कैसे आएगा। इसलिए अभी आप देखते हैं दुनिया में होलसेल में मौत का प्रोग्राम शुरू हो गया है ना, अभी रिटेल में मौत नहीं होती, अब होलसेल में ज्वालामुखी फट रहा है, भूकंप हो रहा है, सुनामी हो रही है, चक्रवात तूफान आ रहे हैं, ये सब होलसेल में मौत के प्रोग्राम शुरू हो गए। अब जाना तो है सबको, जो आज्ञाकारी है वो अपने ज्ञान योग अभ्यास के द्वारा आत्म को शुद्ध करके तैयार हो जाते, लेकिन जो तूफानी है वो कहते हमको जाना ही नहीं है ना, यही रहना है। अब भगवान पहले तो प्यार से समझाता है कि देखो बच्चे सत्युगी दुनिया आनी है, स्वर्गीय दुनिया आनी है, उस स्वर्गीय दुनिया में तुम चलेंगे, ये छोड़ दो वो सत्युगी दुनिया, स्वर्गीय दुनिया बहुत सुंदर है। हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं हमारे लिए यही स्वर्ग है, मोटर गाड़ी बंगला सब कुछ है हमारे पास, हमें वो स्वर्ग चाहिए ही नहीं ना, यहां ही स्वर्ग जैसा जीवन है हमारे पास। भगवान पहले प्यार से समझाता है, लालच देकर के भी समझाता है, नहीं माना तो फिर क्या करेंगे, धर्मराज भी बन जाता है वो, और धर्मराज बन करके दो थप्पड़ मार करके अपने पापों का प्रायश्चित तो करना पड़ेगा, तो धर्मराजपुरी की सजाओं को खा करके आत्म को शुद्ध करके ही जाना है, ऊपर अशुद्ध आत्मा तो जा नहीं सकते, चाहे योग अभ्यास से शुद्ध होकर के जाओ, चाहे मार खा के शुद्ध होकर के जाओ, जाना तो सबको है। और जाते हैं, अब दोनों जाते हैं, जो हंसते हुए जाते हैं वो खुश रहते हैं, जैसे ही ऊपर जाके रेस्ट करके फ्रेश होकर के फिर जब सत्युगी दुनिया आती है तो पुनः इस संसार में आ जाते हैं, लेकिन जो रोते हुए गए उसका क्या होता है, जाकर के वहां सो जाते हैं, थक गए ना, रो रो करके थक गए तो सो गए। नीचे टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, उनको मूड ही नहीं आता है नीचे आने का, और नीचे आने का मूड कब आता है, शाम को, शाम को कुछ मूड आता है, यानी कलयुग हो गया, सुबह है सतयुग, त्रेता युग दिन है, फिर द्वापर युग, और जैसे कलयुग आता है शाम का समय, रात्रि के समय में उसको मूड आता है, शाम हो गई द्वापर के बाद और रात्रि को मूड आता है तो कलयुग आ गया है। जब उसने स्वर्ग का सुख देखा ही नहीं, इसलिए कहते हैं हमारे लिए यही स्वर्ग है, क्योंकि वो स्वर्ग क्या होता है उसका अनुभव ही नहीं है उसको, इसलिए कहते तभी तो इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कहां से आई इतनी आत्माएं? जो है वो तो है ही है, यहां ही है, और जो ऊपर है शाम को मूड आता है तो नीचे उतरते, इसलिए कलयुग में पॉपुलेशन बहुत तीव्र गति से बढ़ने लगा। कहां से आई आत्माएं? तो ऊपर से आई, नीचे आई, क्योंकि ऊपर वो जो नीचे आना चाहते हैं वो फ्रेंड्स उसको कहते हैं, अरे भाई चलो अभी तो चलो, फिर नहीं तो ये टाइम भी बीत जाएगा, कुछ तो अनुभव कर लेते, हम कलयुग का ही अनुभव कर लेते, तब जाकर के उसको मूड आता है, अच्छा ठीक है चलो। क्योंकि देखा कि जो ऊपर से एक बार नीचे आए, एक भी ऊपर वापस आया नहीं, माना नीचे का खेल बढ़िया चल रहा है ना, कहाँ जाना है जब। इसलिए सारे अभी होलसेल में नीचे आ भी रहे हैं, तभी पॉपुलेशन इतनी बढ़ी है, लेकिन अब जाने का समय आएगा तो होलसेल में फिर सबको जाना भी है। तो ये है आठवें अध्याय का अंत। कल हम देखेंगे नौवें अध्याय, राज विद्या गुह्य योग और सीक्रेट्स, और गुह्यते गुह्य बातें हैं कल की। आज कई सीक्रेट्स को आपने देखा, कल और सीक्रेट्स आप देखेंगे गीता की। राज विद्या गुह्य योग, बहुत गुह्य गोपनीय बातें हैं जो देखेंगे। अब यहीं समाप्त करते हैं, परमात्मा की स्मृति में बैठते हैं। योग अभ्यास करना चाहेंगे तो मैं फिर कमेंट्री के साथ योग कराएं। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा कुछ स्नान करना तभी जरूरी हो जाता है जब कोई शौच में जाए तो स्नान करना जरूरी है, लैट्रिन में अगर जाए तो स्नान करना जरूरी है, नहीं तो अगर आप लैट्रिन में नहीं गए हैं तो फिर शुद्ध है तो फिर हाथ मुंह धो करके भी आप बैठ सकते हैं मेडिटेशन में सुबह अमृत वेला। तो इसीलिए जब मेडिटेशन दिशा के लिए तो कहीं पर भी गीता में कहा नहीं है, माना कोई भी दिशा में बैठ सकते, फिर भी कई लोग बताते हैं दुनिया के अंदर ये दिशा में बैठो वो दिशा में बैठो, खैर हम लोग तो कहते हैं कि कोई भी दिशा में बैठ सकते हैं योग के लिए। मेन बात है कि अपने मन को एकाग्र करना है, और विधि अगर यथार्थ है तो कोई भी दिशा में बैठते हैं तो भी उसका ये। बाकी हाँ, कई लोग अगर वीक माइंड के हैं और इस बात को दिल में ले लेते हैं कि भाई यही दिशा में हमको बैठना है तो उसके लिए हम मना भी नहीं करते हैं, जिसी रीति से भी बैठना चाहे, लेकिन जो विधि गीता में बताई है कि दृढ़ता पूर्वक सीधा बैठ करके योग करें। आज तो आप सभी कुर्सी पर बैठे हैं इसलिए हम मना नहीं करते हैं कि भाई आप आसन लगा करके ही बैठो, लेकिन कम से कम फिर भी पीठ सीधी हो, पीठ सीधी हो। नहीं, भगवान ने जो गीता में योग सिखाया आंख खुली रखना है, क्योंकि तीनों द्वार अगर बंद हो जाएंगे तो फिर शक्ति मिलेगी कहां से। छवि को रखने की जरूरत नहीं है, निराकार जो परमात्मा का दिव्य स्वरूप है उस दिव्य स्वरूप पर अपने ध्यान को एकाग्र कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, हाँ। मन ऐसा है क्योंकि हमने कभी एक खुली आंख से अभ्यास नहीं किया ना, इसलिए थोड़ा शुरू में दिक्कत लगेगी, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास करते जाएंगे तो नेचुरल हो जाएगा। वैसे ध्यान को खुली आंख से ही किया जाता है, जैसे कोई व्यक्ति किसी की याद में खो जाता है, बैठे बैठे खो जाए कोई अपने प्रिय व्यक्ति की, तो आंखें खुली होती है, खो गया, पास में से कोई गुजर गया और उसको पूछा जाए यहां से कोई गया तो क्या कहते हैं? मालूम नहीं। आंखें खुली है, यहीं बैठे हैं, दिखाई नहीं दिया तो क्या कहेंगे? मेरा ध्यान नहीं था। तो ध्यान कहां था, किसकी यादों में खोया हुआ था? तो ध्यान किसको कहा गया कि आंखें खुली है, बैठे हैं, लेकिन उस वक्त अगर व्यक्ति की याद में ध्यान लग सकता है तो ईश्वर की याद में क्यों नहीं लग सकता है? क्योंकि व्यक्ति के साथ में शायद प्यार इतना घनिष्ठ है, इसलिए ईश्वर के साथ इतना प्यार ही नहीं है, इसलिए आंखों को बंद करके वो स्वरूप को लाना पड़ता है। लेकिन अगर आपको कर्म योगी बनना है, आंख बंद करके ही अभ्यास होगा तो कर्म योगी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि फिर आंख बंद, और कर्म तो आंख बंद करके नहीं करेंगे आप। तो इसीलिए खुली आंख से अभ्यास होगा तो कर्म योगी बनना भी नेचुरल हो जाएगा। इसलिए हम ये कहते हैं, और गीता में जैसे बताया हुआ है, आप दिलवाड़ा में जाएंगे तो आप देखेंगे 108 मूर्तियां हैं, सबकी आंखें खुली है, किसी की आंखें बंद नहीं है। योग की सही विधि ही खुली आंख से है ना, और इसीलिए कर्म योगी तभी हम नेचुरल रूप से बन सकते हैं। तो अभी हम सभी जो अभ्यास करेंगे ध्यान करने का, भले आपको बीच बीच में आदत है आंखों को बंद करना चाहे कर सकते, लेकिन फिर भी बीच बीच में खोल लेना, तभी दर्शन भी कर पाएंगे, नहीं तो दर्शन होगा नहीं, है ना। हाँ जी, अंतर चक्षु की बात है, लेकिन यहाँ हाँ सही बात है, आपने सही कहा, अंतर चक्षु और बाह्य चक्षु दोनों को ही खुला रखना है। बराबर है, लेकिन मैंने यही कहा कि अगर आपको कर्म योगी बनना है तो खुली आंख से ही अभ्यास करना पड़ेगा। इसीलिए भगवान ने छठे अध्याय में ये बताया कि शांत अंतकरण हो, योगी को भय रहित पवित्र एकांत स्थान में बैठकर, तो इधर उधर जाने की बात नहीं होती है। और क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये अभ्यास की ही बात है, एक बार अभ्यास आ जाएगा तो खुली आंखों बंद आंखों कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, लोगों ने इसीलिए कई प्रकार की विधि अपनाई कि भाई श्वासों पर केंद्रित करो, ये सब विधियां अलग अलग है, लेकिन सब में जाओ नहीं, भगवान ने जो गीता में बताया वही विधि को अपनाओ, वही यथार्थ है। भगवान वाच, भगवान ने आंखें बंद करने के लिए कौन से श्लोक में कहा मुझे तो मालूम नहीं है। हाँ, अर्ध नेत्र ही खुले बताए। ऐसा है कि आपने कौन सा गीता के अंदर पढ़ा है मुझे पता नहीं है, मैंने 20 गीता का अध्ययन किया है और हर गीता के अंदर मैंने यही पढ़ा छठे अध्याय में कि दृष्टि को खुला रखो। आप पुनः पढ़ लीजिए, ध्यान की सही विधि यह है। आप भले कहे कि आंखों को बंद करते तो ज्यादा अच्छा रहता है, लेकिन ये ध्यान की सही विधि नहीं है। लेकिन क्योंकि किसी ने आज दिन तक हमें गाइड नहीं किया, इसीलिए हम बंद आंख के अभ्यासी हो गए। लेकिन आप ये मत समझना कि बंद आंख से मन एकाग्र हो जाता है, नहीं, बंद आंख से आपका कंट्रोल मन के ऊपर नहीं रहता है, सारी दुनिया घूम के आ सकता है मन। खुली आंख से मन जाता है तो पता तो चलता है कि गया, बंद आंख से आपको पता भी नहीं चलता है कि मन कहां चला गया, कभी कभी नींद की अवस्था में चला जाता तो भी मालूम नहीं पड़ता है। लोग निद्रा योग कर लेते हैं, राजयोग क्या करते हैं। भावार्थ ये है कि अगर आपकी आंखें खुली है तो मन जब जाता है ना, आपको पता चलता है गया, दिखाई देता है। बंद आंख से आपका मन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, वो सारी दुनिया चक्कर लगा के आ जाता, आपको पता भी, आपको लगता है मेरा मन कहीं नहीं गया, लेकिन ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। सही बात है, बाद में हम आप से चर्चा करेंगे, आप बाद में हमसे बात करना, क्योंकि ये सिर्फ आपका प्रॉब्लम है, सबका प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो इसीलिए हम सभी अभी बैठेंगे ध्यान की स्थिति के लिए, नहीं तो टाइम चला जाएगा। फिर तो कुछ क्षण के लिए अपने मन को बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं, स्वयं को आत्मभाव में स्थित करते हैं, अंतरचक्षु से स्वयं को देखो, ब्रुकुटी के मध्य में एक चमकते हुए दिव्य सितारे के रूप में, ज्योति पुंज के रूप में ये शरीर मेरा वस्त्र है जो मैंने धारण किया है संसार रंगमंच पर अपना पात्र निभाने। वास्तव में मैं आत्मा सर्व कर्मेंद्रिय की अधिकारी हूं, मालिक हूं। ये कर्मेंद्रिय से भिन्न हूं, धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि को ले चलते हैं एक यात्रा पर परमात्मा के सानिध्य में। पंचतत्व की दुनिया से दूर सूर्य चंद्र तारागण से भी पार अखंड ज्योतिर्मय दिव्य लोक में, जहां चारों ओर दिव्य प्रकाश छाया हुआ है जो अक्षय है, ब्रह्म महतत्व है, अंतर चक्षु से मैं स्वयं को ज्योति पुंज के रूप में उस दिव्य लोक में देख रही हूं, जहां कोई बंधन नहीं, कोई बोझ नहीं। मैं आत्मा स्वतंत्र संपूर्ण मुक्त अवस्था में हूं। मैं आत्मा अपने अनादि स्वरूप में स्थित हूं। मेरा अनादि स्वरूप सतोगुणी है। मैं आत्मा अपने शुद्ध पवित्र स्वरूप में स्थित हूं। चारों ओर एक दिव्य प्रकाश की आभा फैली हुई है। उस प्रकाश के प्रभा मंडल में स्वयं को देख रही हूं। कितना दिव्य स्वरूप है मेरा, मैं आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित हूं, मेरा स्वधर्म शांति है, मेरे मन की गति शांत होती जा रही है, मेरे चारों ओर शांति के प्रकंपन है, इसी शांति में प्रसन्नता समाई हुई है, इसी शांति में सच्चा सुख समाया हुआ है। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं, इसी शांति में परम आनंद है। मैं आत्मा सत चित आनंद स्वरूप हूं, यही मेरी वास्तविकता है। यही मेरा अनादि स्वरूप है। धीरे धीरे मैं स्वयं को पिता परमात्मा के सन्मुख देख रही हूं, जैसे मैं आत्मा प्रकाश पुंज हूं, वैसे मेरे पिता परमात्मा भी प्रकाश पुंज है, दिव्य है, तेजोमय है, प्रकाश स्वरूप है। इस जगत का नियंता है, सर्वज्ञ है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, नित्य दिव्य प्रकाश स्वरूप अशरीरी है। परमात्मा के इस दिव्य स्वरूप पर अपने ध्यान को एकाग्र करती हूं और सर्व शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही है। मैं उस शक्ति की किरणों को स्वयं में समाती जा रही हूं और धीरे धीरे मैं आत्मा सशक्त बनती जा रही हूं। परमात्म शक्ति से स्वयं को भरपूर कर रही हूं। परमात्मा की याद में मैं अपने ध्यान को एकाग्र करती हूं। उस शक्ति को स्वयं में प्रवाहित होने देती हूं। समाते जाओ खो जाओ। कितना सुंदर अनुभव है ये, धीरे धीरे मैं अपने मन और बुद्धि को वापस इस पंच तत्व की दुनिया की ओर, शरीर में प्रकृति की मध्य में एकाग्र करती हूं। और सर्व शक्तियों के किरणों को सर्व कर्मेंद्रिय में प्रवाहित होने देती हूं। और मुझे हर कर्म में, व्यवहार में, संबंधों में परमात्म शक्ति को कर्मेंद्रिय द्वारा प्रवाहित करना है। ओम शांति, 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 ओम शांति। ओम शांति।